آگے سبق دیکھیے بھائی کتاب پر. لفظ اللفظ فی اللغت الرمی یقال اکلت التمرت ولفظت النوات ای رمیتها ثم نقل فی عرف النحات ابتداء او بعد جعله بمعنى الملفوظ کالخلق بمعنى المخلوق الى ما يتلفظ به الانسان حقیقتا او حکما مهملا كان او موضوعا مفردا كان او مرکبا. گزشتہ سبق میں الکلمہ کی تفصیل آپ نے پڑھی. مصنف رحمہ اللہ یعنی شارح جامی نے سب سے پہلے آپ کو یہ بتلایا کہ الکلمہ اور کلام یہ مشتق ہیں کلمن سے, اور کلمن کا معنی ہے زخمی کرنا, اور یہاں لفظوں میں بھی مناسبت موجود اور معنی کے اندر بھی مناسبت موجود. لفظوں کے اندر تو مناسبت ظاہر ہے, کلمن کا مادہ کاف لام میم اور کلمہ اور کلام کا مادہ بھی کاف لام میم, اور معنی کے اعتبار سے مناسبت ظاہر نہیں تھی. تو اس کے بارے میں انہوں نے بتلایا کہ جیسے کلمن یعنی زخمی کرنے کے اندر تاثیر ہے, جسم پر اثر پڑتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, اسی طرح کلمہ اور کلام کے ساتھ بھی تاثیر لازم ہے. اس کی وجہ سے بھی دل جو ہے یا خوش ہوگا اگر اچھے کلمات ہیں, اور اگر برے کلمات کہے تو دل زخمی ہوگا, دل کو تکلیف ہوگی. اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ اصطلاحی اشتقاق مراد نہیں ہو سکتا, کیونکہ اصطلاحی اشتقاق کی تین قسمیں ہیں, ایک اشتقاق صغیر, ایک کبیر اور ایک اکبر, اور ان میں جو مناسبت ہوتی ہے وہ معنی حقیقی کے اعتبار سے ہوتی ہے, جبکہ یہاں پر جو مناسبت ذکر کی گئی وہ معنی التزامی یعنی دلالت التزامی کے اعتبار سے مناسبت ذکر کی, کہ جیسے کلمن کے ساتھ تاثیر لازم ہے اسی طرح کلمہ اور کلام کے ساتھ بھی تاثیر لازم ہے. اس کے بعد بتلایا کہ الکلم کے اندر یہ جو کلم لفظ ہے اس میں جنس ہے, بعض علماء فرماتے ہیں جبکہ بعض فرماتے ہیں کہ یہ جمع ہے. میں نے فرق بتلایا تھا کہ اس میں جنس وہ ہے جو قلیل اور کثیر پر صادق آتا ہے, یعنی قلیل ہو ایک فرد ہو اس کے لیے بھی وہ بولا جاتا ہے, اور کثیر ہو تو ان کے لیے بھی وہی لفظ بولا جاتا ہے. جیسے انسان ایک ہو تو اسے بھی انسان کہیں گے, زیادہ ہو تو انہیں بھی انسان کہیں گے. جبکہ جمع وہ ہے جہاں مفرد تثنیہ اور جمع سب کے لیے الگ الگ لفظ ہوتے ہیں. مثلا ایک کتاب ہو تو کہیں گے کتابن, دو ہو تو کہیں گے کتابانی, اور زیادہ ہو تو کہیں گے کتبن. تو دیکھا یہ ہے جمع, کہ ہاں مفرد کا وزن اور ہے اور جمع کا وزن اور ہے. تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ کلم جو ہے یہ اس میں جنس ہے, اور بعض فرماتے ہیں کہ یہ جمع ہے. شارح جامی نے اس قول کو ترجیح دی ہے کہ یہ کلم جو ہے اس میں جنس ہے, اس میں جنس ہے, اور یہ تمرن اور تمرتن کی طرح ہے. جیسے تمرن اور تمرتن میں واحد اور جنس کے درمیان فرق تا کے ذریعے کیا جاتا ہے. تمرن کا معنی کھجور اور تمرتن کا معنی ایک کھجور. تمرن جب بغیر تا کے ہو تو یہ اس میں جنس ہے, قلیل پر بھی بولا جائے گا, کثیر پر بھی, ایک ہو تو بھی تمرن ہے, زیادہ ہو تو بھی تمرن. لیکن بالخصوص آپ ایک مراد لینا چاہتے ہیں, ایک کھجور کہنا چاہتے ہیں, تو پھر آپ کو تا ساتھ جوڑنی پڑے گی اور تمرتن کہنا پڑے گا. یہ اسی طرح ہے جیسے بقرن اور بقارتن. بقرن گائے بیل کی جنس ہے, اور یہ قلیل اور کثیر سب پر بولا جاتا ہے, لیکن بالخصوص ایک فرد مراد لینا چاہتے ہیں تو پھر گول تا ساتھ جوڑیں گے اور بقرتن کہیں گے. علماء کا یہ گروہ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ اسی طرح کلم اور کلمتن بھی ہے بھائی. تو جیسے بقر اور بقرتن اور تمر اور تمرتن یہ اس میں جنس ہے, اسی طرح کلم اور کلمتن بھی اس میں جنس ہے. اس کا اطلاق قلیل اور کثیر پر ہوتا ہے, اور پھر اس کی دلیل وہ قرآن سے دیتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیہ یصعد الکلم الطیب. الکلم موصوف ہے اور الطیب اس کی صفت ہے, اور اس کی صفت واحد مذکر لائی گئی قرآن کے اندر. معلوم ہو یہ اس میں جنس ہے, جمع نہیں, क्योंकि अगर ये जमा होती तो जमा की सिफत या तो जमा लाई जाती है या वाहिद मुअन्नस बतावीले जमातुन के। तो अल कलिम अगर जमा होता तो इसकी सिफत तय्यबात आनी चाहिए थी या इसकी सिफत तय्यबतुन बतावीले यानी वाहिद मुअन्नस बतावीले जमातुन के, वाहिद मुअन्नस आनी चाहिए थी। लेकिन इसकी सिफत कुरान में न जमा है न वाहिद मुअन्नस है, वाहिद मुजक्कर है, मालूम हुआ यह जमा नहीं है बल्कि इसमें जिन्स है। उलमा का दूसरा ग्रोह जो है वो कहते हैं कि कलिम जो है यह जमा है इसलिए क्योंकि इसका इतलाक तीन या तीन से ज्यादा पर होता है, कम पर इतलाक नहीं होता। और नीज वो कहते हैं कि आपने कुरान से दलील दी है कि अलकलिम की सिफत अत्तय्यिब वाहिद मुजक्कर आई है, तो वो कहते हैं कि अलकलिम से मुराद बाजुल कलिम है भाई, तो बाजुल कलिम जो है वो मुराद हैं इसलिए सिफत मुजक्कर लाई गई। या उनके कहने का मतलब यह है कि यहां बाज का लफ्ज मुजाह महजूफ है तो अत्तय्यिब जो है वो कलिम की सिफत नहीं है बल्कि बाजुल कलिम की यह सिफत है, और बाजुल कलिम इसमें बाज तो मुफरद मुजक्कर है इसलिए तय्यिब भी मुफरद मुजक्कर सिफत लाई गई। पहले ग्रोह वाले फिर जवाब देते हैं कि इसका इतलाक तीन या तीन से ज्यादा पर होता है, यह तो आप इस्तेमाल को दलील बना रहे हैं, हमने जो दलील दी वजा के एतबार से और आप जो दलील दे रहे हैं वो इस्तेमाल को जिक्र कर रहे हैं, वजा और चीज है इस्तेमाल और चीज है। वजा कहते हैं एक लफ्ज को खास माना के लिए मुकर्रर करना, यह क्या है वजा है। मसलन मैंने कहा गिलास, देखो फौरन एक बर्तन आपके जहन में आ गया जिसमें पानी पिया जाता है क्योंकि उर्दू वालों ने इसके लिए यह लफ्ज मुकर्रर किया है। तो एक होती है वजा यानी एक लफ्ज को एक माना के लिए मुतायन करना, और एक है इस्तेमाल भाई एक लफ्ज को एक माना के अंदर इस्तेमाल करना। तो वजा और चीज है इस्तेमाल और चीज है। उसकी मिसाल मैंने जिक्र की थी जैसे दाबतुन, दाबतुन अरबी जुबान में हर उस जानदार के लिए वजा था जो जमीन पर चलने वाला हो, और बाद में यह खास हो गया सवारी वाले और बोझ उठाने वाले जानवरों यानी घोड़े गधे और खच्चर के साथ। तो देखो वजा तो था ये तमाम जानदारों के लिए लेकिन इस्तेमाल किस में होने लगा, खास जानदारों में, खास जानवरों में। तो लिहाजा वजा और चीज है और इस्तेमाल और चीज है। तो आपने क्या कहा कि कलिम का लफ्ज इस्तेमाल होता है तीन या ज्यादा के लिए, तो आप इस्तेमाल को दलील बना रहे हैं और एतबार वजा का होता है, हमने वजा के एतबार से बात की थी कि कलिम का लफ्ज क्या है वजा के एतबार से जिन्स है, और बाद में अब अरब इस्तेमाल किस में करने लगे जमा के तौर पर इस्तेमाल करने लगे, तो इससे कोई नुकसान लाजिम नहीं आता क्योंकि असल एतबार किसका है वजा का है। तो आपका इस्तेमाल को दलील के तौर पर पेश करना सही नहीं, इससे कलिम का जमा होना साबित नहीं हो सकता, हमने वजा की बात की है भाई वजा के एतबार से ये क्या है इसमें जिन्स। और दूसरा आपने कहा कि अत्तय्यिब जो है वो कलिम की सिफत नहीं है बल्कि बाजुल कलिम की सिफत है, तो हम कहते हैं कि यहां बाज का लफ्ज मुजाह महजूफ निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि कलाम से ही बाजियत समझ में आ रही है, क्योंकि इलैही यसअदुल कलिमु तय्यिब अल्लाह की तरफ अच्छे कलिमात बुलंद होते हैं, तो इससे मुराद तमाम अच्छे कलिमात नहीं है बल्कि वो अच्छे कलिमात जो इंदल्लाह मकबूल हों यानी जो इखलास से कहे गए हों। तो हर अच्छा कलिमा इंदल्लाह मकबूल नहीं है, कुछ कलिमे तो वो हैं जो लोगों को दिखाने के लिए अच्छे अच्छे बोले जाएंगे लेकिन वो इंदल्लाह मकबूल नहीं, वो अल्लाह की रजा वहां मकसूद नहीं होती भाई, सिर्फ दिखलावा मकसूद होता है। तो बाजियत तो खुद कलाम से ही समझ में आ रही है लिहाजा बाज को मुजाफ महजूफ निकालने की जरूरत नहीं है। और नीज ये कलीम जो है ये जमा का वजन भी नहीं है भाई, क्योंकि जमा के मखसूस औजान होते हैं जैसे कलम की जमा अकलाम, देखो अफाल ये वजन जमा का है, इसी तरह कुतुब फुउल ये भी किसका वजन जमा का वजन है, और इसी तरह जैसे अस्वद की जमा सूद आती है फुउलुन ये भी क्या है जमा का वजन है, गुलाम की जमा गिलमान आती है, यह भी क्या है, जमा का वजन है। मसाजिद मफाइल, यह भी क्या है, जमा का वजन है। मसाबीह, देखा, यह भी क्या है, जमा का वजन है। तो जमा के मखसूस औजान होते हैं और कलिम यह जमा के औजान में से नहीं। मालूम हुआ यह जमा नहीं है, बल्कि बात वही है जो हमने की कि यह इसमें जिंस है। और मैंने बताया शारह जामी का अंदाज ही बतला रहा है कि वो इस कौल को तरजीह दे रहे हैं, चुनांचे इसीलिए वो जमा वाले कौल को उन्होंने कीला के साथ जिक्र किया, और कीला सीगा तमरीज है जिसके जरिए कमजोर कौल को जिक्र किया जाता है। फिर उसके बाद इन्होंने आपको बतलाया था कि ये जो अल कलिम है इसके अंदर अलिफ लाम जिंसी है, और ये जो ता है ये वहदत के लिए है। इस पर आपके जहन में इश्काल आएगा कि जिंस के अफराद तो कसीर होते हैं, तो अलिफ लाम से पता चला कि अल कलिमा के अफराद क्या होंगे, कसीर, लेकिन आखिर में जब ता वहदत वाली लाई गई तो वहदत का माना तो है फर्द एक है, तो दोनों में मुनाफात है। अल कलिम दलालत कर रहा है कसरत पर और ता दलालत कर रही है वहदत पर, और कसरत और वहदत में मुनाफात है। मैंने आपको बतलाया था कि नहीं, कसरत और वहदत में मुनाफात नहीं। कसरत का माना कसीर होना, ज्यादा होना, वहदत का माना वाहिद होना, एक होना। और अल कलिमा के अफराद कसीर हैं भाई, इसम भी है, फेल भी है, हर्फ भी है, फिर इसम भी अरबी जुबान में हजार हा हैं, फिर फेल भी हजार हा हैं, और हरूफ भी बहुत सारे हैं। तो देखा ये सारे कलिमा के अफराद हैं, तो अलिफ लाम से पता क्या चला कि अफराद कसीर हैं, लेकिन आगे ता से क्या पता चला कि फर्द एक है। तो जवाब जवाब के वहदत जो है वो दो किस्म पर है, एक वहदत हकीकी और एक वहदत मजाजी। वहदत हकीकी वो है जिसका एक ही फर्द होता है, वहां किसी भी लिहाज से कसरत नहीं होती, और वहदत मजाजी उसमें अफराद कसीर होते हैं लेकिन उनमें वहदत होती है बई लिहाज कि वो एक ही जिंस होते हैं या एक ही नौ होते हैं या एक ही सिन्फ होते हैं। तो वहदत कितनी किस्म पर, दो, एक वहदत हकीकी और एक वहदत मजाजी। वहदत हकीकी वो जिसका फर्द भी एक होता है, जैसे वाहिद फर्दी एक फर्द हो, वाहिद शख्सी एक शख्स हो, एक फर्द हो, तो इसमें कसरत नहीं है। ये हकीकत में क्या है, वाहिद है, एक फर्द है। और एक वहदत मजाजी है, वहदत मजाजी में अफराद कसीर होते हैं लेकिन उन सब में वहदत होती है, वो सब एक होते हैं बई लिहाज कि उनकी जिंस एक है, बई लिहाज कि उनकी जिंस एक है या उनकी नौ एक है या उनकी सिंफ एक है। जैसे देखो इंसान, गाय, बैल, बकरी वगैरह, देखो ये कसीर हैं लेकिन इन सब में वहदत है बई लिहाज कि इनकी जिंस एक है। ये सब इनकी जिंस हैवान है, इंसान, गाय, बैल, बकरी वगैरह सब क्या हैं, हैवान, तो देखो सबकी जिंस एक है। तो ये है वहदत मजाजी, वहदत तो है लेकिन हकीकत में वहदत नहीं है बल्कि मजाजन है। वहदत है बई लिहाज के जिंस एक है, और कसरत है बई लिहाज के अफराद क्या हैं, कसीर हैं भाई। इसी तरह वहदत नौई है, इंसान के अफराद जैद, अमर, बकर, खालिद वगैरह अफराद कसीर हैं लेकिन इनमें वहदत है बई लिहाज के इन सब की नौ एक ही है, ये सब इंसान हैं। या वहदत सिन्फी, जैसे मैं कहता हूं पाकिस्तानी, इसके अफराद बहुत सारे लेकिन बई लिहाज इनमें वहदत है, ये एक हैं कि इनकी सिन्फ एक है। तो मालूम हुआ वहदत गोया चार किस्म पर हो गई, एक वहदत फर्दी या शख्सी कहें, और एक वहदत जिंसी, और एक वहदत नौई, और एक वहदत सिन्फी। और वहदत फर्दी की सिर्फ मुनाफात है अलिफ लाम जिंसी के साथ, जबकि बाकी तीन किस्में जो हैं वहदत की, वहदत जिंसी, नौई और सिन्फी, उसमें और जिंस में कोई मुनाफात नहीं, क्योंकि वहदत जिंसी हो, नौई हो या सिन्फी, इनमें भी कसरत होती है। और इसी तरह अलिफ लाम जो जिंसी है उसमें वो भी किस पर दलालत करता है, कसरत पर, तो इन दोनों में कोई मुनाफात नहीं है। बात समझ में आ गई। और फिर उसकी मजीद वजाहत की साहिब जामी ने और बतलाया कि जिंस और वहदत में कोई मुनाफात नहीं, इसीलिए जिंस वहदत के साथ मौसूफ हो जाती है, कहते हैं यह जिंस एक है। ये जेंस एक है। और इसी तरह वाहिद जो है वो जिंसियत के साथ मौसूफ हो जाता है, कहते हैं ये वाहिद जिंस है, ये वाहिद देखा उसको इस वाहिद को मुत्तसिफ कर दिया जिंस होने के साथ। मैंने यहां पर आपको हमल के बारे में बतलाया था, हमल देखो ये जो मुब्तदा और खबर है, ये जो दो मिसालें जिक्र की, हाजल जिंस वाहिदुन, ये वाहिद का हमल किया किस पर, हाजल जिंस पर, और यह कहा दालिकल वाहिदु जिनसुन, जिनसुन का हमल किया किस पर, जालिकल वाहिद पर, यह हमल किया जा रहा है। ये एक है मुब्तदा और दूसरा है खबर, और खबर का हमल होता है किस पर, मुब्तदा पर, और हमल किसे कहते हैं, मैंने आपको तारीफ लिखवाई थी, अलहमलो हुआ इत्तेहादुल मुतगायरैन ज़हनन फिल खारिजी, दो ऐसी चीजें जो जहन में तो जुदा जुदा हैं, अलग अलग हैं, खारिज में उनका मिल जाना, एक ही चीज में इकट्ठे हो जाना, इसको कहते हैं हमल। भाई मसलन मैं आपसे कहता हूं जैद उन आलिमुन, देखो जैद का और माना है, जैद एक शख्स का नाम है, आलिम का और माना है, इसका माना है इलम वाला, जानने वाला। तो जब मैंने कहा जैद उन आलिमुन, जैद मुब्तदा है और आलिमुन उसकी खबर, तो आलिम का मैंने हमल किया किस पर, जैद पर, तो दो अलग अलग चीजें थीं, लेकिन खारिज में इन दोनों का इत्तेहाद आ गया, यानी वो जो खारिज में वो जो जैद है वही क्या है, आलिम, तो वही जात जैद की है और वही जात किसकी है, आलिम की है, तो जैद और आलिम देखो मुत्तहिद हो गए, इकट्ठे हो गए एक ही जात में, इसको क्या कहते हैं, हमल, हमल कहते हैं। तो ये जो हम जब भी मुब्तदा और खबर जिक्र करते हैं, ये जो मुब्तदा होता है ये और चीज होती है, खबर और चीज, इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, यानी खारिज में कि ये दोनों इकट्ठे हैं, एक ही जात में इकट्ठे हो गए हैं, एक ही जात पर ये दोनों बोले जा रहे हैं। तो यहां पर भी देखो हाजल जिनसु वाहिदुन, जिंस पर हमल किया किसका, वाहिद का, मालूम हुआ वही जिंस वही क्या है, वाहिद भी है। और इसी तरह वदालिकल वाहिदु जिंसुन, जालिकल वाहिद पर किसका हमल किया, जिंस का, तो मालूम हुआ वही वाहिद भी है और वही जिंस भी है, दोनों वहदत और जिंस इकट्ठी हो गई। और फिर आखिर में उन्होंने आपको यह भी बतलाया था कि यहां पर ये जो अलिफ्लाम है इसको अलिफ्लाम जिनसी बनाया हमने, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको अलिफ्लाम अहदे खारिजी पर भी महमूल कर सकते हैं। इस पर सवाल पैदा हुआ कि अलिफ्लाम अहदे खारिजी तो वो है जिसके जरिए किसी मुतअय्यन फर्द या अफराद की तरफ इशारा किया जाए, तो अल कलिमा का तर्जमा होगा वो कलिमा, जैसे रजुल और अर रजुल, अर रजुल का क्या तर्जमा, वो आदमी, देखा मालूम हुआ किसी खास मर्द की तरफ इशारा है। तो यहां भी अगर अल कलिमा में अलिफ लाम अहद खारिजी बनाएं तो माना होगा वो कलिमा, यानी किसी खास कलिमे की तरफ इशारा है जो पीछे गुजर चुका, और यहां तो पीछे कोई कलिमा का लफ्ज नहीं गुजरा कि जिसकी तरफ इशारा हो जाए और सुनने वाला समझ जाए। कहते हैं भाई इसके जरिए इशारा हो जाएगा वो जो कलिमा जो नहवियों की जुबान पर जारी होता है, वो जो नहवी आपस में एक दूसरे से जिक्र करते हैं, एक दूसरे को बतलाते हैं कि भाई ये लफ्ज ये क्या है, कलिमा है, और कलिमा तीन किस्म पर होता है, इसम फेल और हर्फ, तो वो जो नहवी कलिमा कलिमा का लफ्ज जिक्र करते हैं अपनी जुबानों पर, उसकी तरफ इशारा कर दिया कि वो वाला कलिमा जो नहवियों की जुबान पर जारी होता है, आगे फिर उसकी तारीफ कर दी। इस पर फिर इश्काल होता है कि यहां तो नहवियों का जिक्र ही नहीं आया, जब नहवियों का जिक्र नहीं तो उनकी जुबान पर जारी होने वाले कलिमे का जिक्र भी नहीं आया, जब उसका जिक्र भी नहीं आया तो अलिफ लाम के जरिए उसकी तरफ इशारा कैसे हो गया, एक चीज मुतायन ही नहीं, एक दफा एक चीज आ जाए तो मुतायन हो जाती है। मसलन मैंने मिसाल जिक्र की थी, जानी रजुलुन अमसी, मेरे पास कल कोई एक आदमी आया था, रजुलुन नकेरा जिक्र किया, लेकिन एक दफा जब जिक्र कर दिया अब क्या हो गया, मुतायन हो गया। अब मैं आपसे कहता हूं फअकरम तो रजुला, फिर मैंने उस आदमी का इकराम किया, आप समझ गए कि नहीं, कि उस आदमी के जरिए किस आदमी की तरफ इशारा हो रहा है, वो जो पहले अभी जिक्र हुआ था नकेरा। तो यहां पर भी कलीम के जरिए इशारा है, वो वाला कलीमा उसका तो पीछे जिक्र ही नहीं आया, न नहवियों का जिक्र है, न नहवियों की जुबान पर आने वाले कलीमा का जिक्र है, तो फिर कैसे इशारा सही। तो मैंने बतलाया था कि लफ्जी तौर पर अगरचे जिक्र नहीं, न नहवियों का जिक्र, न उनकी जुबान पर जारी होने वाले कलीमा का जिक्र, लेकिन मानवी एतबार से नहवियों का जिक्र भी आ चुका, और जब नहवियों का जिक्र आ चुका तो फिर उनकी जुबान पर जारी होने वाले कलीमा का जिक्र भी आ चुका। मानवी तौर पर किस तरह आया, क्योंकि यह किताब है नहव की, और जब नहव की किताब आप पढ़ रहे हैं तो नहवियों का गोया जिक्र आ चुका है, उन्हीं की बातें आप पढ़ रहे हैं तो उनका जिक्र आ चुका है, और जब नहवियों का जिक्र आ चुका तो गोया उनकी जुबान पर जिक्र होने वाले कलीमा का जिक्र भी पहले आ चुका है, तो अल कलीमा के जरिए उसकी तरफ इशारा कर दिया। यहां तक बात समझ में आ गई। और मैंने आपको यह भी बतलाया था कि अल कलीमा के अंदर यह जो ता है यह वहदत के लिए है, लेकिन यह ता, यह गोल ता जो है, ताए मरबूता, यह छह सात मानी के लिए आती है भाई, छह सात मानी कि कभी कभार यह ता आएगी तानीस के लिए जैसे जारिबतुन में है, कभी यह ता आएगी तजकीर के लिए जैसे सलासतुन में है, कभी यह ता आएगी वहदत के लिए जैसे कलिमतुन में है, कभी यह ता जो है मुबालगे के लिए आएगी जैसे अल्लामतुन में है, कभी यह ता मस्तर बनाने के लिए आएगी यानी मस्तरियत के लिए आएगी जैसे जारिबियतुन या फाइलियतुन, कभी कभार यह ता नकल के लिए आएगी मिनल वस्फियत इलल इस्मियत जैसे काफियतुन, और कभी कभार यह ता इवस के लिए आएगी जैसे इदतुन, असल में क्या था वियदुन, वह को हजफ किया और उसके इवज आखिर में क्या ले आए, गोल ता ले आए। तो यह सात मानी के लिए इस्तेमाल होती है यह ताए मरबूता भाई। आगे सबक देखिए भाई, लफ्जुन अल लफ्जु फिल लुगति रमयु युकालु अकलतु तमरत व लफ़ज़तु नवात ऐ रमैतुहा ثم نقل في عرف النحاة ابتداء او بعد جعله بمعنى الملفوظ كالخلق بمعنى المخلوق الى ما يتلفظ به الانسان। यहां से अब साहिब काफिया जो है कलिमा की तारीफ शुरू करने लगे हैं कि इस्तेलाह में यानी नहवियों के हां कलिमा किसे कहते हैं। तो याद रखो, एक है कलीमा का इस्तेलाही माना, वो जो तारीफ अभी जिक्र करेंगे, अल कलीमतु लफ्जों वजियाली माना मुफरदिन, ये है नहवियों के नजदीक। और अरबी जुबान में कि कलीमा किसे कहते हैं, याद रखना, याद रखो, अरबी जुबान में कलीमा जुमला मुफीदा को कहते हैं, और इसी तरह कसीदे को भी कहते हैं। अरबी जुबान में कलीमा किसे कहते हैं, जुमलाए मुफीदा, जुमला हो और जुमलाए मुफीदा हो यानी जिस फायदा दे, जिसमें बात पूरी हो। चुनांचे कुरान में अल्लाह फरमाते हैं कलिमतुल्लाह हियल उलिया, कलिमतुल्लाह हियल उलिया, अल्लाह का कलीमा ही बुलंद है, अल्लाह का कलीमा ही ऊंचा है। और कलिमतुल्लाह से यहां मुराद ला इलाहा इल्लल्लाह है। तो देखो, ला इलाहा इल्लल्लाह एक पूरा कलाम है, पूरा जुमला मुफीदा है, और इस पर कलिमा का लफ्ज़ बोला गया। तो अरबी जुबान में कलिमा किसे कहते हैं, जुमला मुफीदा को कहते हैं। और इसी तरह ये कसीदे को भी कहते हैं, शायर का जो कसीदा हो बीसियों अशार पर मुश्तमिल होता है और उसको कलिमा कह दिया जाता है। मसलन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इमराउल कैस का कसीदा, तो मैं कहूंगा कलिमतुम्र इल कैस, कलिमतुम्र इल कैस। या मसलन मुतनबी का कसीदे की बात करना चाहता हूं तो मैं आपसे कहूंगा कलिमतुल मुतनबी। तो अरबी जुबान में कलिमा का लफ्ज जुमला मुफीदा पर भी बोला जाता है और शायर के कसीदे पर भी बोला जाता है, जबकि इस्तेलाह में वो तारीफ अब साहिबे काफिया करने लगे हैं कि अल कलिमतु लफ्जों वुज़िअली मानम मुफरदिन, ये है कलिमा नहवियों के हां, ये कलिमा की तारीफ करने लगे हैं। याद रखो, तारीफ दो किस्म पर है, एक तारीफ हकीकी है और एक तारीफ लफ्जी। तारीफ हकीकी वो है जिसके जरिए तहसील सूरत होती है, और तारीफ लफ्जी वो है जिसमें तायीन सूरत होती है या तफसीर सूरत होती है। तवज्जो है भाई, इल्म मंतिक बड़ा प्यारा इलम है, इसमें आपको बतलाया जाता है कि किसी चीज की तारीफ कैसे करनी है, तारीफ की शराइत क्या क्या हैं, और उसमें किन किन चीजों का होना जरूरी है और किन का होना जरूरी नहीं है। तो इल्म मंतिक में आप पढ़ते हैं कि तारीफ दो किस्म पर है, एक तारीफ हकीकी और एक तारीफ लफ्जी। तारीफ हकीकी वो है जिसके जरिए तहसील सूरत होती है, यानी सूरत गैर हासिला को हासिल किया जाता है। मसलन आपको पता नहीं था, तालिब इलम को पता नहीं कि अलकलिमा किसे कहते हैं, मसलन दर्जा उला या सानिया वाला तालिब इलम, उसको अभी अलकलिमा का पता नहीं, तो अगर आप उसके सामने अलकलिमा कहेंगे भी उसको समझ में नहीं आएगा कि क्या चीज मुराद है, क्योंकि उसे कलिमा की सूरत ही हासिल नहीं है, उसे उसकी यूं कहें आसान लफ्जों में उसकी पहचान ही नहीं है भाई कि कलिमा किसे कहते हैं। फिर उसको किताबों के अंदर बतलाया जाता है अल कलिमतु लफ्जों वुज़िअ लिमाअना मुफ़रदिन, देखो पूरी पहचान करवाई गई। अब उसको पता चल गया अच्छा कलिमा बामाना लफ्ज को कहते हैं, कलिमा बामाना लफ्ज को आसान लफ्जों में वो लफ्ज जिसका कोई माना हो भाई उसको क्या कहते हैं, कलिमा कहते हैं। देखो ये पहले उसको पता नहीं था, अब उसको पता चल गया, तो उसको सूरत गैर हासिला जो है वो हासिल हो गई। अब जब भी आप कलिमा कहेंगे वो समझ जाएगा कि क्या मुराद है, बामाना लफ्ज मुराद है। तो तारीफ हकीकी जो है इसके जरिए सूरत गैर हासिला को हासिल किया जाता है, और ये उमूमन जिन्स और फसल से मुरक्कब होती है, जिन्स और फसल से, सब जिन्स भी हो सबसे आला तारीफ जिन्स भी हो और फसल भी हो भाई फसल। दूसरी तारीफ लफ्जी है, तारीफ लफ्जी वो है जिसमें तायीन सूरत होती है। मसलन तालिब इलम को यह तो पता है कि शेर को अरबी में असद कहते हैं, शेर की उसको पहचान है, वो शेर को जानता है, लेकिन किताब में गजनफर का लफ्ज आया, अब उसे नहीं पता है गजनफर किसे कहते हैं, तो अब आप उसको बतलाते हैं अल गजनफरु असदुन, गजनफर क्या है, शेर है। देखा, अब उसे पता चल गया कि गजनफर किसे कहते हैं, शेर को। लेकिन मुझे बताइए क्या शेर की उसको पहले पहचान थी या शेर का अब उसको पता चला है, शेर की उसको पहले ही पहचान थी कि शेर एक जंगली दरिंदे का नाम है जो बड़ा खौफनाक दरिंदा है, तो उसको शेर की तो पहचान थी। हां उसको यह पता नहीं था कि इस दरिंदे को गजनफर भी कहते हैं। ये यूं कहो उसके जहन में बहुत सारे मानी मौजूद थे, उनमें शेर भी था, लेकिन उसे यह नहीं था पता कि गजनफर किस माना के लिए है, किस सूरत के लिए गजनफर है। तो सिर्फ आपने तायीन करके उसको बता दिया कि अल गजनफर ओ असदुन, गजनफर किसका नाम है, असद यानी शेर का नाम है भाई। तो क्या उसे कोई नई सूरत हासिल हुई, किसी नई चीज की पहचान हुई, नहीं नहीं, उसे उस शेर की उसे पहले से ही पहचान थी। हां सिर्फ तायीन आपने कर दी कि गजनफर का लफ्ज इस चीज के लिए वजा है, इसके लिए मुकर्रर है, और वो चीज उसको पहले से मालूम थी। सिर्फ इतना पता नहीं था कि गजनफर किस, मेरे जहन में तो हजारों मानी है लेकिन पता नहीं इनमें से किसको गजनफर कहते हैं। आपने सिर्फ क्या किया, तायीन कर दी। ये नहीं कि शेर का उसको पता ही नहीं था, आपने फिर शेर को, शेर की उसको पहचान करवाई कि एक जंगली दरिंदा होता है, जंगल में रहता है, ऐसे उसके पंजे होते हैं, चीरने फाड़ने वाला होता है। नहीं नहीं, ये सब चीजें उसको पहले पता थी। तो यहां तहसील सूरत नहीं है, कोई नई सूरत हासिल नहीं हुई, सिर्फ क्या हुई है, तायीन सूरत हुई है कि गजनफर का लफ्ज वो इस सूरत के लिए मुतायन है भाई। और अल कलिमा की जो आपने तारीफ की थी वहां बाकायदा तहसील सूरत हुई थी भाई, तालिब इलम को पता ही नहीं था कि अल कलिमा किसे कहते हैं भाई। तो आपने पूरी तारीफ की लफ्जों वुज़ियाल मानम मुफरदिन के जरिए भाई। तो तारीफ हकीकी में क्या किया जाता है, सूरत गैर हासिला को हासिल किया जाता है, और तारीफ लफ्जी के अंदर सिर्फ तायीन सूरत होती है कि यह लफ्ज इस सूरत के लिए वजा किया गया है, वहां कोई नई सूरत इंसान को हासिल नहीं होती भाई। तो अब जी जो तारीफ हकीकी है यह अमूमन जिन्स और फसल पर मुश्तमिल होती है, किस पर, जिन्स और फसल पर मुश्तमिल होती है। बल्कि उससे पहले मुआर्रिफ और मुआर्रफ को भी समझ लें, याद रखो, जिस चीज की तारीफ की जाए उसको कहते हैं मुअर्रफ, और जो तारीफ है उसको कहते हैं मुअर्रिफ। मुअर्रफ जिसकी पहचान करवाई गई, और मुअर्रिफ जिसने पहचान करवाई, जो पहचान करवाने वाली है यानी तारीफ। मसलन मैंने कहा अलकलिमतु लफ्जों वुज़िअ लिमअना मुफ्रदिन, किसकी पहचान करवाई मैंने आपको, अलकलिमा की, तो कलिमा हुआ मुअर्रफ, इसमें मफूल का सीगा है, जिसकी पहचान करवाई गई, या यूं को जिसकी तारीफ की गई, जिसकी तारीफ की गई, तो अलकलिमा की पहचान करवाई वो है मुअर्रफ। और किस चीज ने अलकलिमा की पहचान करवाई आपको, तारीफ ने, किसने, लफ्जों वुज़िअ लिमअना मुफ्रदिन, इसने पहचान करवाई, तो ये है मुअर्रफ। तो तारीफ और मुअर्रफ का एक माना, और मुअर्रफ जिसकी तारीफ की जाए, मुअर्रफ और मुअर्रफ का फर्क समझ में आ गया, मुअर्रफ जिसकी तारीफ की जाए, मुअर्रफ जो तारीफ की जाए, तो मुअर्रफ कह लो या तारीफ कह लो एक ही बात है। अब याद रखो ये जो तारीफ है इसको जामिअ मानिअ होना चाहिए, जामिअ मानिअ होना चाहिए, और या दूसरा लफ्ज इस्तेमाल कर लो, तारीफ को मुत्तरिद और मुनाकिस होना चाहिए। मुत्तरिद त्वा ज़वाब है, त्वा है, मुत्तरिद मुनाकिस होना चाहिए। मुत्तरिद और मुनाकिस का भी वही माना जामिअ मानिअ, मुत्तरिद का माना जामिअ, मुनाकिस का माना मानिअ। तो तारीफ को क्या होना चाहिए, जामिअ माने, या कोई आपसे कह दे तारीफ को क्या होना चाहिए, मुत्तरिद और मुनाकिस होना चाहिए, एक ही बात है भाई। जामिअ का माना यह है कि जिस चीज पर भी मुअर्रफ सादिक आए उस पर तारीफ को भी सादिक आना चाहिए। जिस जिस चीज पर मुअर्रफ सादिक आ रहा है उन सब पर तारीफ भी सादिक आनी चाहिए। मसलन मैंने तारीफ की अलकलिमतु लफ्जों वुज़िअ लिमअना मुफ्रदिन, यह कलिमा की तारीफ है, और कलिमा के अफराद क्या हैं, इसम फेल और हर्फ। तो यह जो लफ्जों वुज़िअ लिमअना मुफ्रदिन यह इसम पर भी सादिक आना चाहिए, और नीज ये फेल पर भी सादिक आना चाहिए, नीज ये हर्फ पर भी सादिक आना चाहिए, क्योंकि यह इन पर कलिमा सादिक आ रहा है। इसम भी क्या है, कलिमा, फेल भी क्या है, कलिमा, हर्फ भी क्या है, कलिमा, तो इन सब पर मुअर्रफ सादिक आ रहा है, और जिन पर मुअर्रफ सादिक है उन पर तारीफ भी सादिक आनी चाहिए। तो फिर हम कहेंगे ये तारीफ क्या है, जामिअ है, इसने अपने तमाम अफराद को जमा कर लिया, सबको घेर लिया, सबको घेर लिया। और नीज तारीफ को मानिअ होना चाहिए, यानी कोई और चीज जो जिस पर मुअर्रफ सादिक नहीं आ रहा वो इसके अंदर दाखिल ना हो, वो उसके अंदर
दाखिल ना हो।
एक चीज है उस पर कलिमा तो सादिक नहीं आ रहा था, वो कलिमा नहीं है, लेकिन तारीफ के अंदर वो भी दाखिल हो रहा है, तो हम कहेंगे ये तो आपकी तारीफ मानिअ नहीं, इसमें तो गैर कलिमा भी दाखिल हो गया। आप तो तारीफ किसकी कर रहे थे, कलिमा की, तो सिर्फ कलिमा के अफराद पर ये सादिक आनी चाहिए, गैर कलिमा को इसके अंदर दाखिल नहीं होना चाहिए, लेकिन आपने ऐसे अल्फाज बोल दिए कि वो गैर कलिमा पर भी ये तारीफ सादिक आ रही है और वो भी इसके अंदर दाखिल हो रहा है, तो कहेंगे ये तारीफ मानिअ नहीं है। दूसरी चलो आसान मिसाल से समझ लो, जैसे मसलन मैं आपसे कहता हूं कि पाकिस्तानी की तारीफ करें, पाकिस्तानी आदमी किसको कहते हैं, तो आप कहते हैं पाकिस्तानी वो है जो पाकिस्तान में रहता हो, हिंदुस्तान में रहता हो, और इसी तरह अफगानिस्तान में रहता हो, तो ये आपकी तारीफ मानिअ नहीं है भाई, इसमें तो गैर पाकिस्तानी भी दाखिल हो गए, हिंदुस्तान वाले तो पाकिस्तानी नहीं, इसी तरह अफगानिस्तान वाले तो पाकिस्तानी नहीं, तो वो भी आपने क्या तारीफ की, मैंने तारीफ किसके पूछी, पाकिस्तानी की, और इसमें कौन दाखिल हो गए, हिंदुस्तानी और अफगानी भी दाखिल हो गए, वो पाकिस्तानी नहीं, उन पर यह मुअर्रफ सादिक नहीं आ रहा, लेकिन तारीफ उन पर सादिक आ रही है, क्योंकि आपने क्या कहा, जो कहां रहते हो, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और अफगानिस्तान में, तो यह आपकी तारीफ मानिअ नहीं, इसमें गैर पाकिस्तानी दाखिल हो रहे हैं, तो तारीफ को मानिअ होना चाहिए, और नीज तारीफ को जामिअ भी होना चाहिए, यानी यह ना हो के मुअर्रफ के बाद अफराद उससे रह जाएं, उसमें दाखिल ना हो। मसलन मैंने आपसे पूछा पाकिस्तानी आदमी किसे कहते हैं, तो आपने कहा जो लाहौर में, कराची में, क्वेटा में और पिशावर में रहते हों, अब मुझे बताइए, पाकिस्तानी सिर्फ इन्हीं शहरों में रहते हैं या और शहरों में भी रहते हैं? और शहरों में भी रहते हैं, तो ये आपकी तारीख जामिया नहीं, इसने तमाम अफराद पाकिस्तानी का इहाता नहीं किया। लिहाजा तारीख तो ऐसी हो जो अपने तमाम अफराद का इहाता कर ले और गैर जो है इसके अंदर दाखिल ना हो। भाई अब आपसे पूछे पाकिस्तानी किसे कहते हैं, तो अब आप तारीफ करते हैं कि पाकिस्तानी वो है जो पाकिस्तान में रहते हैं। देखा, अब सिर्फ पाकिस्तानी इसके अंदर दाखिल हो गए, तो ये गैर भी दाखिल नहीं और नीज तमाम अफराद इसमें आ गए, चाहे वो किसी भी शहर में रहता हो पाकिस्तान की या किसी भी गांव में रहता हो, सब इसके अंदर दाखिल हो गए। तो तारीफ को क्या होना चाहिए, जामिया भी और मानिया भी। और ये तारीफ जो है अमूमन जिन्स और फसल से मुरक्कब होती है। जिन्स, जिन्स में मुअर्रफ भी दाखिल हो जाता है और गैर मुअर्रफ भी, और फिर फसल के जरिए गैर को निकाला जाता है। जैसे इंसान की तारीफ क्या है, हैवान नातिक, देखो हैवान जिन्स है और नातिक फसल है। हैवान कहा, हैवान कहा तो इसमें इंसान भी दाखिल और इंसान के साथ गाय, बैल, बकरी, बाकी हैवानात भी दाखिल हो गए। जिन्स जो होती है वो आम होती है, उसमें उमूम होता है, और फिर आगे फसल लेकर आए हम नातिक, भाई जो नुतुक वाला है, नातिक है, तो इससे बाकी तमाम हैवानात खारिज हो गए। तो तारीफ जिन्स और फसल पर मुश्तमिल होती है। जिन्स में गैर मुअर्रफ भी दाखिल हो जाता है और फिर फसल के जरिए गैर मुअर्रफ को तारीफ से निकाल दिया जाता है। तो अलकलिमा की तारीफ भी इसी तरह है। अलकलिमा तो लफ्जों वुज़िहा लिमाना मुफ़रदिन, देखो इसमें लफ्ज जो है वो जिन्स के दर्जे में है, और वुज़िहा लिमाना मुफ़रदिन ये फसल के दर्जे में है। लफ्जों जिन्स के दर्जे में है। देखो कलीमा, आसान लफ्जों में कलीमा कहते हैं बा माना लफ्ज को, लेकिन लफ्ज वो तो आम है, चाहे उसका कोई माना हो या माना ना हो। तो कलीमा के अंदर लफ्ज जो है ये जिन्स के दर्जे में है। ये जब लफ्ज कहा तो इसमें मुहमल भी दाखिल हो गए। मुहमल वो लफ्ज जिसका कोई माना ना हो, भाई वो लफ्ज जिसका कोई माना ना हो उसको मुहमल कहते हैं। और ये आप भी कभी कभार कलाम में इस्तेमाल करते हैं। मसलन आपका कोई साथी आपके पास आता है और आप उसे कहते हैं कि पानी वानी पियोगे भाई। अब देखो ये पानी का तो माना है, लेकिन ये वानी क्या है, बेमाना लफ्ज है, मुहमल लफ्ज है जिसको आपने जोड़ दिया साथ। या इसी तरह आपका साथी आया, आप उसको कहते हैं रोटी शोटी खाएंगे, तो रोटी का तो माना है, लेकिन ये शोटी का लफ्ज जो आपने साथ में जोड़ दिया ये क्या है, बेमाना है, यानी मुहमल है। तो जब कहा अलकलिमतुल लफ्जुन, तो लफ्जुन ये जिन्स के दर्जे में है, इसके अंदर हर तरह के लफ्ज दाखिल हो गए, चाहे वो मुहमल हो चाहे वो मौजू हो यानी उनका कोई माना हो, या इसी तरह चाहे वो मुफरद हो चाहे मुरक्कब हो। तो इसमें मुहमलात भी दाखिल हो गए, मौजूआत भी दाखिल हो गए, मुफरदात भी दाखिल हो गए और मुरक्कबात भी दाखिल हो गए। किसमें, लफ्जों में, चाहे लफ्ज जैसा भी हो, चाहे मुहमलात में से हो चाहे मौजूआत में से हो यानी किसी माना के लिए वजह किया गया हो, चाहे मुफरदात में से हो चाहे मुरक्कबात में से हो, तमाम अल्फाज इसके अंदर दाखिल हो गए। फिर आगे कहा वुज़िहा लिमानम मुफ़रदिन, तो वुज़िहा ये भी फसल के दर्जे में, लिमानन ये भी फसल के दर्जे में, और मुफ़रदिन ये भी क्या है, फसल के दर्जे में। तो जिन्स भी जिक्र हुई और तीन फसलें जिक्र हो गईं। तो जब कहा लफ्ज़ुन तो इसमें हर तरह के लफ्ज दाखिल हुए। फिर जब कहा वुज़िहा तो मुहमलात निकल गए, क्योंकि मुहमल के अंदर वजा नहीं होती। वजा मैंने आपको बतलाया था कि आगे आगे शारह जामी भी जिक्र करेंगे। वजा कहते हैं एक चीज को दूसरी चीज के लिए मुकर्रर करना, कि एक चीज से दूसरी चीज का इलम हो जाए, एक चीज से दूसरी चीज का इलम हो जाए, इसको वजा कहते हैं। देखो ये जो मैं तकरीर कर रहा हूं, मैं बोलता जा रहा हूं और आप समझते जा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं उर्दू जुबान में ये वाले अल्फाज किस माना के लिए वजा हैं, किस माना के लिए मुकर्रर हैं। मसलन मैंने कहा गिलास, देखो पानी पीने वाले एक बर्तन की सूरत फौरन आपके जहन में आ गई, क्योंकि आप जानते हैं कि उर्दू में गिलास का लफ्ज इस बर्तन के लिए मुकर्रर है, वजह है। इसी तरह देखो मैं अल्फाज जिक्र करता जाऊंगा और आप उनके माना समझते जाएंगे। मसलन मैं कहता हूं बारिश, पहाड़, आबशार, बादल, जमीन, सर्दी, गर्मी, बहार, खजां, सुबह, शाम। देखा मैं जो जो लफ्ज बोलता जा रहा हूं आप उसका माना समझते जा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि उर्दू जुबान में यह लफ्ज इस माना के लिए वजा है, यानी मुकर्रर किया गया है। तो जब वजा का लफ्ज आया तो इससे मुहमलात निकल गए क्योंकि उनमें वजा नहीं होती, और जब माना की कैद आई तो इस सूरत में हुरूफ तहज्जी इससे निकल गए। भाई हुरूफ तहज्जी जो अलिफ बा ता सा आप पढ़ते हैं वो इससे निकल गए क्योंकि उनमें वजा तो है, उनको मुख्तलिफ आवाजों के लिए मुकर्रर किया गया है, लेकिन उनका मकसद तरकीब है, तरकीब है, माना नहीं। यह हुरूफ तहज्जी, भाई हुरूफ तहज्जी अलिफ बा ता सा, क्या इनका कोई माना है? नहीं, इनको माना के लिए मुकर्रर नहीं किया गया, वजा नहीं किया गया, इनको मुख्तलिफ आवाजों के लिए मुकर्रर किया गया है। ये मुख्तलिफ आवाजों पर दलालत करते हैं और मकसद इनका यह है कि इनको जोड़कर अल्फाज को लिखा जाता है। मसलन आप जैद लिखना चाहते हैं तो आपने देखा जैद में जा की आवाज है तो आपने जा लिखी, फिर आगे या की आवाज है और फिर दाल की, तो आपने जा, या और दाल को जोड़ा और जैद का लफ्ज लिख लिया। तो ये जो हुरूफ तहज्जी हैं ये मुख्तलिफ आवाजों पर क्या करते हैं? दलालत करते हैं। अलिफ बा ता सा जीम हा खा, देखो हर एक की अलग अलग आवाज है। किसी जुबान वाले जो अल्फाज बोलते हैं वो जिस तरह की आवाजों के साथ उन लफ्जों को अदा करते हैं उसके मुताबिक ये हुरूफ तहज्जी मुकर्रर किए गए हैं। भाई तो ये जो हुरूफ तहज्जी हैं ये मुख्तलिफ आवाजों पर दलालत करते हैं और मकसद क्या होता है कि इनको जोड़कर अल्फाज बनाए जाएं, अल्फाज को लिखा जाए। चुनांचे आपको भी बाज औकात उस्ताद कोई बात लिखवा रहा होता है, नया लफ्ज आता है जो इससे पहले आपने पढ़ा ही नहीं, कहीं पर सुना भी नहीं है उससे पहले, लेकिन फिर भी आप उसको लिख लेते हैं या नहीं? उन आवाजों के मुताबिक हुरूफ को जोड़कर वो वाला लफ्ज आप लिख लेते हैं। भाई तो ये जो हुरूफ तहज्जी हैं इनका मकसद क्या है? इनको जोड़कर मुख्तलिफ अल्फाज को लिखा जा सके। जैद कैसे लिखना है, बकर कैसे लिखना है, खालिद कैसे लिखना है, जैसे तो देखो जैसी आवाज से यह लफ्ज अदा होता है वही वाले हुरूफ आप मिलाकर लिख लेते हैं। मसलन खालिद लिखना है तो खालिद के शुरू में खा की आवाज है, फिर अलिफ है, फिर उसके बाद लाम की आवाज है, फिर दाल की, तो इन्हीं हुरूफ को आप जोड़ते हैं और खालिद लिख लेते हैं। तो जब कहा अल कलिमा तो लफ्जों वुज़िआ लिमानन, कलिमा ऐसा लफ्ज जिसको वजा किया गया हो किसी माना के लिए, तो हुरूफ तहज्जी माना की कैद से निकल गए क्योंकि हुरूफ तहज्जी को तो माना के लिए वजा नहीं किया गया, उनको तो तरकीब के लिए, तरकीब का माना है जोड़ना आपस में, उनको तो आपस में जोड़ने के लिए वजा किया गया है कि इनको जोड़कर अल्फाज लिखे जाएं। उसके बाद जब आगे मुफरद की कैद आई तो मुफरद कैद के जरिए मुरक्कबात निकल गए। भाई मुफरद के जरिए मुरक्कबात निकल गए, तो देखा तो अलकलिमा तो लफ्जों वुज़िआ लिमाना मुफरदीन, इसमें लफ्ज क्या था, किसके दर्जे में है? जिन्स के दर्जे में, और वजा इससे मुहमलात निकल गए, ये भी फसल है, लिमानन ये भी फसल है, इसके जरिए हुरूफ तहज्जी निकल गए और मुफरत की कैद के जरिए मुरक्कबात निकल गए। तो गोया एक जिन्स है और तीन फसलें हैं इस तारीफ के अंदर, तो हर तारीफ मुश्तमिल होती है जिन्स और फसल पर। बात समझ में आ गई? ये काफिया की मतन की तशरी मुख्तसरन हो गई। काफिया का मतन क्या गुजर गया? अलकलिमतु लफ्जों वुज़िआ लिमानन मुफरदीन। अब उसी की खूब तफसील करेंगे शारह जामी भाई। तो आगे वो कहते हैं लफ्जुन अल्लफ्जु फिल लुगति रम्यु युकालु अकलतु तमरत व लफ़ज़तु नवाता अय रमैतुहा। अच्छा भाई पहले इसको समझ लें भाई। भाई देखिए अरबी जुबान में लफ्ज जो है उसका माना है फेंकना, फेंकना। चुनांचे अरबी जुबान में कहते हैं अकल तु तमरता व लफ़ज़तु नवाता। अकल तु तमरता, मैंने खजूर खाई वलफजतु नवाता, नवात घुटली को कहते हैं, वलफजतु नवाता और मैंने घुटली फेंक दी। तो क्या कहते हैं अरबी जुबान में, अकल तु तमरता वलफजतु नवाता, मैंने खजूर खाई और घुटली फेंक दी। तो देखा फेंकने के लिए क्या लफ्ज है, लफजतु, लफजतु मैंने फेंक दी। तो मालूम हुआ लफ्ज का क्या माना है अरबी जुबान में, फेंकना, फेंकना। तो यहां पर फिर एतराज होता है कि देखो अलकलिमा है मुबतदा और लफ्जुन है उसकी खबर। अलकलिमा तो लफ्जुन, कलिमा क्या है, लफ्ज है, और लफ्ज का अरबी जुबान में क्या माना है, फेंकना। तो ये मालूम हो ये मस्दर है, तो अलकलिमा है जात और मस्दर क्या है, वसफ है। याद रखो ये जो मस्दर है ये वसफ है, इसका खारिज में अपना अलग कोई वजूद नहीं होता। खाना पीना सोना जागना चलना फिरना ये सब मस्तर हैं और ये सब औसाफ हैं। ये सब क्या हैं, औसाफ हैं। आपने खाना खाया तो खाने का फेल पाया गया, आपने खाना नहीं खाया तो खाने का फेल भी नहीं पाया गया, आपने पानी पिया तो अशुर्ब यानी पीना पाया गया, आपने पिटाई की तो जर्ब पाई गई। तो देखो ये जो मस्तर है इसका खारिज में अपना अलग वजूद नहीं होता, ये सिफत है। मसलन जैद ने जर्ब लगाई तो जर्ब है, ये जर्ब जैद की सिफत है, इसका अपना अलग वजूद नहीं। और याद रखो जो हमें खारिज में दिखाई देती है वो है हासिल बिल मस्तर, मस्तर से जो हालत हासिल हुई वो हमें दिखाई देती है, मस्तर दिखाई नहीं देता। मसलन मस्तर है हंसना, तो खारिज में हमें हंसना दिखाई नहीं देता। आप कहेंगे हमें तो नजर आता है कोई साथी हंस रहा होता है, याद रखो वो मस्दर नहीं, मस्दर से जो सूरत जो कैफियत हासिल हुई वो हासिल बिल मस्दर है और आपको जो दिखाई देती है वो हासिल बिल मस्दर है। यानी आपको हंसना नहीं दिखाई देता, आपको हंसी दिखाई देती है। तो ये जो आपको नजर आ रही है ये क्या है, हंसी है, हंसना नहीं। हंसना मस्दर है, इसका खारिज में वजूद नहीं है। तो हासिल बिल मस्दर हमें दिखाई देता है। इसी तरह दौड़ना, दौड़ना आपको खारिज में दिखाई नहीं देता, हां इस दौड़ने से जो हालत और जो सूरत हासिल हुई यानी दौड़ वो आपको दिखाई देती है। तो खारिज में दौड़ना नजर नहीं आता बल्कि क्या नजर आती है, दौड़। इसी तरह चलना, खारिज में आपको चलना नहीं नजर आता बल्कि उससे जो उससे कैफियत हासिल हुई वो आपको दिखाई देती है यानी चाल। तो मस्तर जो है वसफ है। तो यहां पर अलकलीमा आया, अलकलीमा है जात और आगे लफ्सुन उसकी खबर आई और लफ्सुन क्या है, मस्तर, और मस्तर तो वसफ है, इसका अपना कोई अलग खारिज में वजूद नहीं। तो जुमला क्या बन गया, अलकलिमा तो लफ्जुन, और मैंने आपको बतलाया था कि ये जो खबर होती है इसका हमल होता है मुबतदा पर, तवज्जो है, ये जो खबर है इसका हमल होता है मुबतदा पर, और हमल किसे कहते हैं, मैंने आपको बतलाया था अलहमलो हुआ इत्तेहादुल मुतगायरैन ज़हनन फिल खारिजी, वो इत्तेहाद मिल जाना, मुतगायरैन दो ऐसी चीजें जो अलग अलग हैं, ज़हनन किस एतबार से, ज़हन के एतबार से, यानी ज़हन में दो जो अलग अलग चीजें हैं उनका मिल जाना फिल खारिजी, कहां पर, खारिज में। मसलन मैं कहता हूं ज़ैदुन आलिमुन, देखो ज़ैद एक जात है और ज़ैद का और माना, ये ज़ैद जात का नाम है, और आलिम का और माना, आलिम का क्या माना है, जानने वाला, इलम वाला। तो ज़ैद और है, आलिम और है, ज़हन में ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन जब मैंने कहा ज़ैदुन आलिमुन तो आलिमुन का हमल किस पर कर दिया, ज़ैद पर कर दिया, यानी खारिज में इन दोनों को इकट्ठा कर दिया। मालूम हुआ वही जात जिसको जिसका नाम क्या है, ज़ैद है, वही क्या है, आलिम भी है। तो ज़ैद भी वही, आलिम भी वही, दोनों चीजें इकट्ठी हो गई खारिज में। ज़ैद तो ये ज़ैद और था, आलिम और था, लेकिन जब हमल किया ज़ैदुन आलिमुन कहा तो खारिज में दोनों क्या हो गए, जुड़ गए, इकट्ठे हो गए, मिल गए, एक ही जात है, वही ज़ैद भी है और वही आलिम भी है। तो हमल में इस तरह दो चीजें इकट्ठी हो जाती हैं खारिज के अंदर। तो यहां पर भी आया अलकलिमतु लफ्जुन, कलिमा तो है जात और लफ्ज क्या है, मस्दर है, तवज्जो है, लफ्ज मस्दर है और मस्दर का तो कोई खारिज में वजूद नहीं है क्योंकि मस्तर सिफत है भाई। तो मस्दर सिफत है और मस्दर का हमल जात पर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये जो अभी मैंने तफसील बयान कर दी, मस्दर का हमल जात पर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर अल कलिमतु लफ्जुन को ठीक मान लिया जाए तो इसका मतलब है जो अल कलिमा की जात है वही क्या है, लफ्ज भी है। जो अल कलिमा की जात है वही क्या है, लफ्ज भी है। यह दूसरी मिसाल से समझ लो, जैदुन आदलुन, जैदुन आदलुन, जैद एक जात का नाम है और आदल का माना है इंसाफ करना, तो आदल मस्तर है और उसका हमल किस पर हो रहा है, जैद पर। और हमल का क्या माना होता है कि खारिज में दो चीजों का इकट्ठा हो जाना एक ही जात में। तो मालूम हुआ जो जैद है वही आदल भी है, वही आदल भी है। तो गोया आपने तो जात को आदल करार दे दिया, वही जैद भी है और वही आदल भी है, हालांकि आदल वो तो मस्तर है, उसका तो खारिज में कोई वजूद ही नहीं है। तो मालूम हुआ मस्तर का हमल जात पर सही नहीं, क्योंकि अगर हमल सही मानेंगे तो इसका तो मतलब है मस्तर का खारिज में वजूद आ जाएगा, हालांकि मस्तर का तो खारिज में वजूद नहीं है। तो यहां भी इसी तरह अलकलिमा है मुब्तदा और लफ्जुन उसकी है खबर, और यहां मस्तर का हमल जात पर सही नहीं है। इश्काल समझ में आया? तो उसका जवाब आपको देंगे साहिब जामी कि अरबी जुबान में तो लफ्जुन का माना है फेंकना, लेकिन यहां लफ्जुन से मुराद इस्तेलाही माना है जो नहवियों के यहां है, और नहवियों के यहां लफ्जुन कहते हैं मा यतलफ्फज़ु बिहिल इंसान, मा यतलफ्फज़ु बिहिल इंसान, वो जिस पर इंसान तलफ्फुज करे उसे क्या कहते हैं, लफ्ज कहते हैं। ये जो मैं तकरीर कर रहा हूं ये क्या है, लफ्ज है भाई, जिस पर मैं तलफ्फुज कर रहा हूं। तो अरबी जुबान में लफ्ज का क्या माना, फेंकना, और इल्मे नहव की इस्तेला में लफ्ज का क्या माना, मा यतलफ्फज़ु बिहिल इंसान, जिस पर इंसान तलफ्फुज करे, और ये जिस पर इंसान तलफ्फुज करे वो लफ्ज है, वो भी जात है भाई, वो भी क्या है, जात है। तो यहां पर अल कलिमतु लफ्जुन में ये लफ्जुन से लुगवी लफ्ज नहीं मुराद बल्कि इस्तेलाही लफ्ज मुराद है, यानी मा यतलफ्फज़ु बिहिल इंसान, और वो भी जात है। तो अल कलिमा भी जात और लफ्जुन बमाने मा यतलफ्फज़ु बिहिल इंसान भी क्या है, जात है। तो जात का जात पर हमल सही हो जाएगा कि कलिमा वो चीज है जिस पर इंसान तलफ्फुज करता है। मालूम हुआ अरबी जुबान में लफ्ज का माना है फेंकना, और नहवियों की इस्तेला में लफ्ज का क्या माना है, मा यतलफ्फज़ु बिहिल इंसान। तो मालूम हुआ इस लफ्ज को एक माना से नकल किया गया दूसरे माना की तरफ, नहवियों ने क्या किया, इस लफ्ज को नकल कर लिया दूसरे माना की तरफ। जैसे सलात का लफ्ज है अरबी जुबान में, सलात का अरबी जुबान में माना है दुआ, लेकिन फिर बाद में इस्तेलाहे शरीयत में इसको नकल कर लिया गया एक मखसूस इबादत के लिए जिसको हम नमाज कहते हैं। अब उस नमाज को क्या कहा जाता है, सलात। तो ये क्या है, मनकूल। इसी तरह यहां पर भी लफ्ज का माना तो क्या था, फेंकना, फिर इसको नकल करके किस माना में नहवी इस्तेमाल करने लगे, मा यतलफ्फज़ु बिहिल इंसान, तो ये लफ्ज हुआ मनकूल भाई। ये क्या है, तो ये मनकूल है, एक माना से दूसरे माना की तरफ इसको नकल कर लिया गया। इसमें आपको शारह जामी बताएंगे कि यहां दो इहतमाल हैं, या तो लफ्ज को बराह रास्त नकल कर लिया गया उस इस्तेलाही माना की तरफ, तवज्जो है, लफ्ज का पहला माना क्या, फेंकना, और फिर इसको बराह रास्त नकल कर लिया किस माना में, मा यतलफ्फज़ु बिहिल इंसान, मा यतलफ्फज़ु बिहिल इंसान। एक सूरत यह है, और दूसरी सूरत यह है कि इस लफ्ज को पहले मलफूज के माना में कर लिया गया, किस माना में कर लिया, मलफूज के माना में कर लिया। जैसे आप जानते हैं कि मस्तर कभी इसमें फाइल के माना में होता है और कभी इसमें मफूल के माना में, जैसे जैदुन आदलुन, ये आदलुन किस माना में है, आदिलुन के माना में है। तो कभी मस्तर किस माना में होता है, इसमें फाइल, जैसे आदल बमाने आदिल, और कभी मस्तर इसमें मफूल के माना में होता है, जैसे खल्क बमाने मखलूक के, खल्क का लफ्ज अरबी में आम इस्तेमाल होता है, बमाना है मखलूक के इस्तेमाल होता है। तो मालूम हुआ मस्तर कभी इसमें फाइल के माना में इस्तेमाल होता है और कभी इसमें मफूल। तो यहां पर भी लफ्जुन है तो मस्तर, माना तो है फेंकना, लेकिन फिर इसको किस माना में कर लिया, मलफूज के माना में, लफ्ज को किस माना में कर लिया, मलफूज के माना में कर लिया। तो एक दफा यह नकल हुआ मलफूज के माना की तरफ और फिर दूसरी दफा यह नकल हुआ माया तलफ़ज़ु बिहिल इंसान की तरफ। तवज्जो है, दो एहतमाल जिक्र करेंगे, या तो नहवियों ने क्या किया, इब्तिदाअन ही लफ्ज का माना था फेंकना, उससे नकल कर दिया किस माना की तरफ, माया तलफ़ज़ु बिहिल इंसान की तरफ। दूसरी सूरत के बराहे रास्त नकल नहीं किया, दो नकलें आई यहां पर, पहली दफा नकल किया किस माना की तरफ, मलफूज के माना की तरफ, अब लफ्ज बोला और माना क्या, फेंकना नहीं, मलफूज यानी फेंकी हुई चीज, फेंकी हुई। तो पहले लफ्ज को का माना था फेंकना, फिर इसको नकल कर लिया किस माना की तरफ, मलफूज यानी फेंकी हुई चीज, फिर इस लफ्ज को दूसरी दफा नकल किया किसकी तरफ, माया तलफ़ज़ु बिहिल इंसान। तो दो एहतमाल हैं यहां पर, या तो लफ्ज को बराह रास्त माया तलफ़ज़ु बिहिल इंसान के माना की तरफ नकल किया गया, या पहले इसको किस माना में किया गया, मलफूज के माना में, और फिर किस माना में किया गया, माया तलफ़ज़ु बिहिल इंसान के माना में। तो गोया दो दर्जों में यह नकल हुई, एक सूरत में एक ही दर्जे में बराह रास्त नकल हुआ और दूसरी सूरत में दो दर्जों के अंदर, पहले लफ्ज किस माना में हुआ, मलफूज के माना में, और फिर ये लफ्ज जो मलफूज के माना में था इसको फिर नकल कर दिया किसकी तरफ, माय तलफ़ज़ु बिहिल इंसान की तरफ। तो दो एहतमाल हैं और दोनों एहतमाल जो हैं इन दोनों के अंदर इनको देखें तो बाज एतबार से ये अच्छे हैं और देखा जाए तो बाज एतबार से इनमें खराबी है। भाई तवज्जो है, तकरीर समझ में आ रही है कि अरबी जुबान में लफ्ज का क्या माना, फेंकना, फिर नहवी किस माना में इस्तेमाल करने लगे, माया तलफ़ज़ु बिहिल इंसान। तो ये जो लुगवी माना से नकल किया इस्तिलाही माना की तरफ, तो इसमें या तो बराह रास्त नकल कर लिया, एक ही दफा में बराह रास्त नकल कर लिया गया, दूसरी सूरत यह है कि एक ही मरतबा में नहीं नकल किया गया बल्कि पहले लफ्ज को किस माना में कर लिया, मलफूज यानी फेंकी हुई चीज के माना में, और फिर यह लफ्ज जो फेंकी हुई चीज के माना में था, यह लफ्ज जो मलफूज के माना में था, इसको फिर किस माना में कर लिया, माया तलफ़ज़ु बिहिल इंसान के माना में कर लिया। तो ये जो दो एहतमाल हैं दोनों में देखें तो बाज एतबार से ये अच्छे हैं और बाज एतबार से इनमें खराबी है। किस तरह अच्छे हैं और क्या खराबी है, देखो पहला एहतमाल क्या था कि लुगवी माना से बराह रास्त किस माना की तरफ नकल कर लिया, इस्तिलाही माना की तरफ। लफ्ज का पहला माना क्या था, फेंकना, फिर क्या माना हुआ, माया तलफ़ज़ु बिहिल इंसान, यानी यूं कहो जिस पर इंसान तलफ़ुज करता है, यानी जो चीज मुंह से फेंकता है, यानी मुंह से फेंकी हुई चीज, यानी लफ्ज जिस पर इंसान क्या करता है। तो पहला माना क्या था, फेंकना, और फिर किस माना में कर लिया, मुंह से फेंके हुए अल्फाज, मुंह से फेंके हुए अल्फाज इस माना में कर लिया। तो यहां पर इस एतबार से तो ये अच्छा है कि नकल एक ही दफा पाई गई, दो या तीन नकलें नहीं है, एक ही दफा लफ्ज को फेंकने के माना से उठाकर किस माना में कर लिया, मुंह से फेंके हुए अल्फाज के माना में कर लिया। तो नकल एक दफा है या दो दफा, एक दफा, तो यहां तअद्दुद नकल नहीं है, तो बाई एतबार ये वाला एहतमाल बेहतर है, लेकिन इस एहतमाल में खराबी भी है, ये कबीह भी है, बाई एतबार के मनकूल अनहू और मनकूल इले के दरमियान मुनासिबत बईदा है। याद रखो लफ्ज को एक माना से दूसरे माना की तरफ नकल किया जाए तो उनमें उमूमन मुनासिबत होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, उनमें मुनासिबत होनी चाहिए। यहां पर भी किस लफ्ज को नकल किया गया, लफ्ज को, तो ये हुआ मनकूल, ये लफ्ज क्या है, मनकूल, और किस माना से नकल किया गया, फेंकना, वो हुआ मनकूल अनहु, उससे नकल किया गया है। और किस माना की तरफ नकल किया, माया तलफ़ज़ु बिहिल इंसान, तो वो हुआ मनकूल इलै। भाई मनकूल किसे कहेंगे, लफ्ज को, और मनकूल अनहु वो जो पहला माना था, और मनकूल इलै, मनकूल इलै ही दूसरा माना जिसकी तरफ क्या किया, नकल किया गया है। तवज्जो है, तो लिहाजा तो यहां नकल है, तो मनकूल अनहु और मनकूल इलह ये जो दो माना हैं इनमें मुनासिबत होनी चाहिए, और यहां मुनासिबत बईदा है, मुनासिबत बईदा है। किस तरह मुनासिबत बईदा है, कि लुगवी माना क्या, मनकूल अनहू क्या है, फेंकना, और मनकूल इलैही जिस माना की तरफ नकल किया गया वो क्या है, मा यतलफ़ज़ु बिहिल इंसान, यानी आसान लफ्जों में कहो मुंह से फेंके हुए अल्फाज, मुंह से फेंके हुए अल्फाज, या यूं कह लो मुंह से फेंकी हुई चीज। पहला माना क्या था, फेंकना, और दूसरा माना क्या है, फेंकी हुई चीज, तवज्जो है, या यूं कह लो मुंह से फेंके हुए अल्फाज। तो फेंकना सबब होता है और फेंकी हुई चीज वो मुसबब होती है। आपने कोई चीज फेंकी तो ये फेंकना पाया गया, तो वो फेंकी हुई चीज भी है कोई। आपने एक चीज को फेंका, फेंकने का फेल होगा तो कोई चीज क्या होगी, फेंकी हुई होगी। तवज्जो है, तो फेंकना सबब होता है किस चीज का, फेंकी हुई चीज का। सबब है तो मुसबब है, सबब नहीं तो मुसबब भी नहीं है। तो यहां पर भी इसी तरह है, मनकूल अनहू माना क्या है, फेंकना, और मनकूल इले माना क्या है, फेंकी हुई चीज। भाई तो फेंकना सबब और फेंकी हुई चीज मुसबब, गोया सबब का नाम उठाकर किसको दे दिया, फेंकी हुई चीज को वो नाम दे दिया। तो इसको कहते हैं तस्मियतुल मुसबब बि इस्मि सबब। मुसबब का नाम रखना, कौन सा नाम, सबब वाला। सबब वाला नाम किसको दे देना, मुसबब को। तवज्जो है, लफ्ज का क्या माना था, फेंकना, लेकिन ये नाम किसको दे दिया, फेंकी हुई चीज को, यानी सबब का नाम किसको दे दिया, मुसबब को दे दिया। तो ये तस्मियतुल मुसबब भी इसमें सबब की कबील से है, तो ये मुनासिबत बईदा है, करीबा नहीं है। और दूसरा, दूसरा अगर एहतमाल ले लें, दूसरा एहतमाल क्या था कि लफ्ज को अव्वलन लफ्ज का माना था फेंकना, फिर इसको किस माना में कर लिया गया, मलफूज यानी फेंकी हुई चीज के माना में, और फिर वो लफ्ज जो फेंकी हुई चीज के माना में था फिर इस लफ्ज को दोबारा नकल कर लिया गया किस माना में, मा तलफ़ज़ु बिहिल इंसान, यानी मुंह से फेंकी हुई चीज के माना में, मुंह से फेंके हुए अल्फाज के माना में। यह तरीका, यह भी मीन वजह अच्छा है और मीन वजह इसमें खराबी, इसमें खराबी यह है कि इसमें तअद्दुद नकल का इर्तिकाब करना पड़ा, नकल को दो मरतबा मानना पड़ा। भाई पहले लफ्ज को नकल किया मलफूज के माना की तरफ, और फिर यह लफ्ज जो मलफूज के माना में था इसको नकल किया किसकी तरफ, माय तलफ़ज़ु बिहिल इंसान। तो नकल कितनी दफा पाई गई, दो मरतबा नकल पाई गई, और तअद्दुद नकल पसंदीदा नहीं, तअद्दुद नकल, तो इसमें दो दर्जे एतबार करना पड़ा, नकल के दो दर्जों का। तो बई एतबार ये पसंदीदा नहीं, ये कबीह है, लेकिन बई एतबार इसमें हुसन है, ये अच्छा है कि इसके अंदर मनकूल अनहू और मनकूल इले जो दो माना है उनमें मुनासिबत करीबा है, करीबी मुनासिबत है भाई, ज्यादा मुनासिबत है उसके अंदर। यहां पर किस माना से किस माना की तरफ नकल किया, बई माय तलफ़ज़ु बिहिल इंसान की तरफ नकल करना है, किस माना से नकल किया, वो लफ्ज जो मलफूज के माना में था, वो लफ्ज जो फेंकने के माना में था उसको नहीं नकल किया, बल्कि कौन से लफ्ज को नकल किया, जो वो लफ्ज जो मलफूज के माना में हो चुका है इसको अब नकल किया किसकी तरफ, माय तलफ़ज़ु बिहिल इंसान की तरफ। तो यहां मनकूल अनहू माना क्या बना, मलफूज। तवज्जो है भाई, यहां दो दर्जे हैं नकल के, पहले लफ्ज को किस माना में ले लिया, मलफूज, ये वाली नकल को अब आप छोड़ दें, फिर अब ये लफ्ज जो किस माना में है, मलफूज के माना में है, इसको नकल किया किसकी तरफ, माय तलफ़ज़ु बिहिल इंसान। अब सिर्फ इस नकल पे नजर रखें, लफ्ज का माना क्या, मनकूल अनहू माना क्या, मलफूज, और मनकूल इले माना क्या, माय तलफ़ज़ु बिहिल इंसान। अब इन दोनों में मुनासिबत करीबा है, क्योंकि मलफूज का भी क्या माना, फेंकी हुई चीज, और माय तलफ़ज़ु बिहिल इंसान का भी क्या माना, मुंह से फेंके हुए अल्फाज। तो ये मुंह से फेंके हुए अल्फाज भी फेंकी हुई चीज ही है, तो मलफूज आम था, फेंकी हुई चीज मुंह से फेंकी जाए वो भी मलफूज, हाथों से फेंकी जाए वो भी मलफूज, तो मलफूज आम था, वो माय तलफ़ज़ु बिहिल इंसान को भी शामिल था और इसके अलावा और चीजों को भी शामिल था, फिर उसमें से एक माय तलफ़ज़ु बिहिल इंसान के साथ इसको खास कर दिया। यानी यूं कहो मलफूज आम था, मलफूज क्या था, आम था, उसमें मुंह से फेंकना भी दाखिल था और हाथों से फेंकना भी। फिर इस लफ्ज को जो मलफूज के माना में है इसको फिर खास कर दिया किसके साथ, मैं तलफ़ज़ बिहेल यानियों को आम का नाम दे दिया खास को। लफ्ज का माना तो क्या था, मलफूज मलफूज, बात समझ में आ गई भाई। एक नकल हम कर चुके, लफ्ज को किस माना में नकल कर लिया, मलफूज के माना में। बस अब पहली नकल को छोड़ दो, फिर इस ये जो लफ्ज जो किस माना में है, मलफूज के माना में है, इसको नकल किया किसकी तरफ, माय तलफ़ज़ बिहिल इंसान की तरफ इसको नकल किया गया। तो मनकूल अनहु माना क्या, मलफूज, और मनकूल इलै जिसकी तरफ नकल किया गया वो क्या, माय तलफ़ज़ बिहिल इंसान। तो पहला माना हुआ मलफूज और दूसरा हुआ माय तलफ़ज़ बिहिल इंसान, और मलफूज मलफूज आम है, ये मुंह से फेंकी हुई चीज यानी माय तलफ़ज़ बिहिल इंसान को भी शामिल है और हाथ से फेंकी हुई चीज को भी शामिल है। तो मलफूज आम था और उसी की एक किस्म क्या है, माय तलफ़ज़ बिहिल इंसान, वो है खास। तो आम वाला नाम किसको दे दिया, खास को दे दिया। तो ये मुनासिबत करीबा है, ये क्या है, मुनासिबत करीबा, बात समझ में आ गई। तो ये दो एहतमाल हैं यहां, हासिल कलाम फिर सुन लो कि यहां पर एक इश्काल ये हुआ कि ये अलकलिमतु लफ्जुन, लफ्जुन तो मस्तर है और मस्तर का हमल तो जात पर सही नहीं। तो मुला जामी ने आपको बताया ये लफ्जुन यहां इस्तिलाही माना में है यानी मा यतलफ्फज़ु बिहिल इंसान के माना में है। लुगवी एतबार से तो इसका माना था फेंकना, फिर इसको नकल कर लिया गया किसकी तरफ, मा यतलफ्फज़ु बिहिल इंसान की तरफ। या तो एक ही मरतबा में इसको नकल कर लिया गया, और एक सूरत यह है कि दो मरतबा में नकल किया गया, पहले लफ्ज उनको किस माना में कर लिया, मलफूज के माना में, और फिर इसको किस माना में कर लिया, मा यतलफ्फज़ु बिहिल इंसान के माना में कर लिया। तो दो सूरतें दो एहतमाल हैं, और दोनों के अंदर देखा जाए तो बाज एतबार से दोनों अच्छे हैं और बाद एतबार से दोनों में खराबी भी है। पहला तरीका जिसमें बराह रास्त नकल करते थे, लफ्ज उनका माना था फेंकना और इसको बराह रास्त नकल कर लिया किस माना में, माय तलफ़ज़ु बिहिल इंसान के माना में। तो यहां पर तादुद नकल नहीं है, बई एतबार ये एहतमाल अच्छा है। लेकिन दूसरे एतबार से इसमें खराबी है कि यहां पर मनकूल अनहु माना जो है वह है फेंकना, और मनकूल इले माना जो है माय तलफ़ज़ु बिहिल इंसान, इन दोनों में ज्यादा मुनासिबत नहीं है, मुनासिबत बाईदा है। क्या है, मुनासिबत बाईदा है। ये किस कबील से है, तस्मियतुल मुसब्बा बिस्मे सबब, लफ्ज का माना तो था फेंकना और ये नाम किसको दे दिया, फेंकी हुई चीज यानी लफ्जों को दे दिया। तो ये तस्मियतुल मुसब्बा बिस्मे सबब की कबील से है। और अगर दूसरा इहतमाल लिया जाए कि लफ्ज को पहले किस माना में किया गया, मलफूज के माना में, और फिर इस लफ्ज को नकल किया गया किसकी तरफ, माय तलफ़ज़ु बिहिल इंसान, तो इसमें भी मिन वजह हुसन है और मिन वजह कुबो है। कबाहत इसमें इस एतबार से है, यूं कहे खराबी, खराबी इसमें इस एतबार से है कि यहां दो मरतबा नकल हुआ है, तवज्जो है, तो यहां तअद्दुद नकल पाया गया जो पसंदीदा नहीं। और दूसरे एतबार से देखा जाए तो इसमें हुसन भी है, यह अच्छा भी है, बई एतबार के मनकूल अनहु और मनकूल इले उन दोनों मानी में मुनासिबत करीबा है, वहां थी मुनासिबत बईदा। पहला माना क्या था, फेंकना, दूसरा माना क्या हुआ, फेंकी हुई चीज, और यहां पर पहला माना क्या, मलफूज मलफूज फेंकी हुई चीज, और फिर दूसरा माना क्या, माय तलफ़ज़ु बिहिल, तो मलफूज वाले माना से नकल कर लिया किसकी तरफ, माय तलफ़ज़ु बिहिल इंसान की तरफ नकल कर लिया। तो ये तस्मियतुल खास भी इस्मिल आम की कबील से है, तस्मियतुल खास, किस तरह तस्मियतुल खास भी इस्मिल आम है, मलफूज आम था, मलफूज का क्या माना, फेंकी हुई चीज, चाहे मुंह से फेंके चाहे हाथ से, और इसी के अंदर मुंह से फेंके हुए अल्फाज भी शामिल थे या नहीं, वो भी फेंकी हुई चीज है, तो ये मलफूज तो आम था, तो वो लफ्ज जो आम के लिए था वो किसको दे दिया, खास को, वही नाम दे दिया, तस्मियतुल खास बिस्मिल आम। बात भी समझ में आ रही है, ये तस्मियतुल खास बिस्मिल आम की कबील से, ये बात समझ में आई या नहीं, ये लफ्ज किस माना में था, मलफूज के माना में, और मलफूज का क्या माना, फेंकी हुई चीज, फिर यह नाम किसको दे दिया, माय तलफ़ज़ु बिहिल इंसान, यानी मुंह से फेंके हुए अल्फाज को यह नाम दे दिया। तो पहला माना क्या था, फेंकी हुई चीज, और ये जो मुंह से अल्फाज फेंके हैं ये भी क्या है, फेंकी हुई चीज ही है, तो दोनों में मुनासिबत करीबा है। तो दोनों में मीन वजह हुसन भी है और मीन वजह कुबह भी है। कबह कबीह का माना होना, कबीह का माना है बुरा होना, बदसूरत होना, तो मीन वजह दोनों में हुसन भी है दोनों इहतमालों में और मीन वजह कुबह भी है। पहला तरीका अच्छा है किस एतबार से कि उसमें तादुद नकल नहीं, और उसमें कुबह है किस एतबार से कि मनकूल अनहु और मनकूल इले जो दो मानी हैं उनके दरमियान मुनासिबत बाईदा है, वो तस्मियतुल मुसब्बब इसमें सबब की कबील से है। दूसरा तरीके में बुराई भी है और अच्छाई भी, बुराई किस एतबार से कि तादुद नकल है दो दफा नकल किया गया, और अच्छाई है किस एतबार से कि मनकूल अनहु और मनकूल इले इन दोनों मानी में मुनासिबत है। भाई मनकूल अनहु कौन सा माना है, मलफूज फेंकी हुई चीज, वो आम थी, और मा तलफ़ज़ु बिहिल इंसान क्या है खास, तो खास को वही आम वाला नाम दे दिया। नीज थोड़ी सी और तफसील याद रखें कि तस्मियतु सबब बिस्मिल मुसब्बब इसको मुनासिबत बाईदा करार दिया गया, और तस्मियतुल खास बिस्मिल आम इसको क्या करार दिया गया, मुनासिबत करीबा। तवज्जो है, तस्मियतुल मुसब्बब बिस्मिल सबब को मुनासिबत बाईदा करार दिया गया और तस्मियतुल खास बिस्मिल आम को मुनासिबत करीबा करार दिया गया, इसकी क्या वजह है। वजह यह कि सबब और मुसब्बब बिल्कुल अलग अलग होते हैं, उन दोनों में इत्तेहाद नहीं होता, उन दोनों में इत्तेहाद नहीं होता। मसलन देखो भाई, देखो भाई, जैसे ये नमाज का सबब वक्त होता है, मसलन असर की नमाज उसका सबब असर का वक्त है, आज असर की नमाज आप अभी पढ़ना चाहते हैं तो आपकी नमाज नहीं होगी, क्योंकि अभी आप पर नमाज का वजूब ही नहीं आया। असर का वक्त आएगा तो आप पर असर की नमाज लाजिम हो जाएगी, और फिर आप अदा करेंगे तो अदा होगी, उससे पहले असर की नमाज अदा नहीं कर सकते। तो मालूम हुआ ये जो नमाज का वक्त होता है ये उस नमाज के वजूब के लिए सबब होता है। तो वक्त है सबब और नमाज क्या हुई, मुसब्बब। अब सबब और मुसब्बब दोनों अलग अलग चीजें हैं, एक का हमल दूसरे पर नहीं कर सकते। हम यूं नहीं कह सकते अस्सलातु वक्तुन, नमाज वक्त है, सलात मुसब्बब को मुब्तदा बनाया और वक्त को क्या बनाया, खबर। अस्सलातु वक्तुन, नमाज क्या है, वक्त है, यह कहना सही नहीं। या इसका बरअक्स कर लें, वक्त को मुब्तदा बनाएं और सलात को खबर बनाएं, अल वक्तु सलातुन, वक्त क्या है, सलात है। देखा, यहां न सबब का हमल मुसब्बब पर हो सकता है, न मुसब्बब का हमल सबब पर हो सकता है, दोनों जमा नहीं हो सकते, दोनों अलग अलग हैं। जबकि खास और आम में हमल एक जानिब से हो सकता है, मसलन हैवान है आम, इसमें इंसान भी शामिल और गाय बैल बकरी भी शामिल, और इंसान है खास, तवज्जो है, हैवान क्या हुआ आम और इंसान क्या हुआ खास, तो हम कह सकते हैं अल इंसान हैवानुन, इंसान क्या है, हैवान। देखा, खास को बनाया मुब्तदा और आम को बनाया खबर, तो यह हमल सही बन रहा है, इंसान हैवान है। हां, हैवान इंसान है, यह हमल सही नहीं। तो देखो, एक जानिब से हमल सही हो जाता है, तो सबब और मुसब्बब में एक जानिब से भी हमल सही नहीं होता था तो वो क्या है, मुनासिबत बाईदा है। तो मालूम हुआ वो क्या है, वहां मुनासिबत मुनासिबत बाईदा है, और यहां एक जानिब से तो कम से कम हमल हो जाता है कि आम का हमल कर दिया जाए खास पर, तो यहां मुनासिबत मुनासिबत करीबा है। भाई बात समझ में आ गई। अब देखिए भाई, किताब पर अल्लफ़्ज़ु फ़िल लुग़ति अर्रमय, लफ्ज़ जो है अरबी जुबान में अर्रमय फेंकना है, लफ्ज़ का क्या माना है, फेंकना। युकालु अरबी जुबान में कहा जाता है अकलतु तमरता वलफ़ज़तु नवाता, मैंने खजूर खाई, वलफ़ज़तु नवाता ऐ रमैतुहा, यानी उसको मैंने फेंक दिया, उसकी घुटली को मैंने उसकी घुटली को फेंक दिया। देखा, लफ़ज़तु आया, माना आगे खुद कर रहे हैं, ऐ रमैतुहा, कि मैंने उसकी घुटली फेंक दी। सुम्म नुक़िला फी उर्फिन नुहात इब्तिदाअन औ बाद जालिही बिमानल मलफूज़ कल खल्क़ बिमानल मखलूक़ इला मा यतलफ़्ज़ु बिहिल इंसान, फिर इस लफ्ज को जिसका माना फेंकना था इसको नकल कर लिया गया फी उर्फ इन नुहात इन नहवियों के उर्फ में। किस तरफ नकल किया गया? आखिर में आ रहा है इलामा ये तलफ़ज़ बिहिल इंसान की तरफ नकल किया गया। लेकिन दो एहतमाल हैं, दो सूरतें हैं नकल की, या तो इब्तिदाअन इब्तिदाअन ही नकल कर लिया गया फौरन किसकी तरफ माय तलफ़ज़ बिहिल इंसान की तरफ, औ बाद जाली ही बिमानल मलफूजी या इस लफ्ज ये लफ्ज जो फेंकने के माना में था इसको मलफूज के माना में करने के बाद। तर्जमा समझ में आ रहा है? औबाद अजाल ही बिमानल मलफूजी या इस लफ्ज को मलफूज के माना में करने के बाद, कल खल्क बिमानल मखलूकी जैसे कि खल्क है बमानए मखलूक भाई, तो फिर इसको नकल कर लिया गया इला मा यतलफ्फज़ु बिहिल इंसानु उस चीज की तरफ जिस पर इंसान तलफ्फुज़ करता है, हकीकतन औ हुक्मन। जी ये एक एतराज का जवाब दे रहे हैं। एतराज ये कि आपकी तारीफ जैदुन को तो शामिल हुई, आपने क्या कहा लफ्ज किसे कहते हैं माय तलफ्फुज़ु बिहिल इंसान जिस पर इंसान तलफ्फुज करता है, तो आपकी तारीफ जैद जाराबा बकर खालिद ये सारे तो लफ्ज हो गए, इन सब पर क्या करता है इंसान तलफ्फुज करता है। लेकिन जाराबा इसके अंदर हुआ जमीर भी है, जब मैंने जाराबा कहा तो हुआ पर तलफ्फुज किया आपने सुना नहीं, तो इस हुआ पर तो कोई तलफ्फुज नहीं हुआ। इसी तरह जब मैं कहता हूं इस रिब फेले अमर है, इसके अंदर कौन सी जमीर है? अंता जमीर है। क्या उस पर मैंने तलफ्फुज किया आपने सुना नहीं, तो ये तो तारीफ से खारिज हो गए। आपने तो क्या कहा लफ्ज किसे कहते हैं माय तलफ्फुज़ बिहिल इंसान, तो जिस पर इंसान तलफ्फुज करें वो तो लफ्ज है जैसे जैद और जाराबा, लेकिन इस जाराबा के अंदर जो हुआ जमीर है उस पर तो इंसान तलफ्फुज नहीं करता। इसी तरह इजरीब के अंदर जो अंता जमीर है उस पर तो इंसान तलफ्फुज नहीं करता, वो तो लफ्ज की तारीफ से खारिज हो गए, हालांकि वो भी लफ्ज हैं भाई, वो भी क्या हैं लफ्ज हैं। तो जवाब दे रहे हैं आपको कि भाई इंसान जिस पर तलफ्फुज करे हकीकतन और हुक्मन, वो तलफ्फुज करना आम है, चाहे हकीकतन उस पर क्या करे तलफ्फुज करे औ हुक्मन या हुक्मन तलफ्फुज करे। हुक्मन यानी हुक्म लगा दिया जाए कि इसने इस पर तलफ्फुज किया है। मसलन मैंने कहा जाराबा, तो आप कहेंगे कि आपने जाराबा पर भी तलफ्फुज किया है और हुआ पर भी, हकीकतन तो तलफ्फुज नहीं किया लेकिन हुक्म क्या लगा दिया कि तलफ्फुज किया है। एजरिब मैंने इजरीब पर तो हकीकतन तलफ्फुज किया, लेकिन आप क्या कहेंगे कि आपने अंता पर भी तलफ्फुज कर लिया, हकीकतन तो उस पर तलफ्फुज नहीं किया लेकिन हुक्म क्या लगा दिया कि आपने गोया उस पर भी तलफ्फुज कर लिया है। फिर सुनो एतराज क्या होता है कि आपकी तारीफ तो इससे तो बाज अल्फाज क्या हो गए खारिज हो गए, जैसे जराबा में हुआ जमीर और इजरीब के अंदर अंता जमीर, क्योंकि माय तलफ्फुज़ बिहिल इंसान में वो शामिल नहीं, उस पर इंसान तलफ्फुज नहीं करता। तो जवाब दिया कि तलफ्फुज करना आम है, चाहे हकीकतन हो चाहे हुक्मन हो, इन पर हकीकतन तो तलफ्फुज नहीं है लेकिन हुक्मन है, यानी यह हुक्म लगा दिया जाएगा कि आपने उस पर भी तलफ्फुज कर लिया है। तो कहते हैं हकीकतन और हुक्मन, चाहे कि उस पर जिस पर इंसान तलफ्फुज करे हकीकतन या हुक्मन, मुहमलन कान औ मौजूअन, ये बतला रहे हैं कि वो जो लफ्ज है चाहे मुहमल हो औ मौजूअन या उसको किसी माना के लिए वजा किया गया हो, मुफरदन कान औ मुरक्कबन, वो मुफरद हो या मुरक्कब हो, यानी बतलाना ये चाहते हैं कि यह तारीफ है, तारीफ जिंस और फसल से मुरक्कब होती है, तो यह लफ्ज किसके दर्जे में है जिंस के दर्जे में है, इसमें मुहमल भी दाखिल मौजूआ भी दाखिल मुफरद भी दाखिल और मुरक्कब भी दाखिल हैं, फिर मुहमल को भी निकालेंगे इसमें से फिर मुरक्कब को भी इसमें से निकालेंगे, लेकिन लफ्ज जब कहा तो लफ्ज के अंदर यह सब दाखिल हो गए, क्योंकि मुहमल भी क्या है लफ्ज मुरक्कब भी क्या है लफ्ज है। आगे देखिए भाई कहते हैं वल लफ्जुल हकीकी का जैदिन व जाराबा वल हुक्मी युकल मनवी ये फी जैदुन जाराबा व इज़रिब। अब मिसाल दे रहे हैं, कहते हैं वल लफ्जुल हकीकी, लफ्ज हकीकी जो है का जैदिन जैसे जैद है व जाराबा और जाराबा है, ये लफ्ज हकीकी हैं यानी इन पर हकीकतन हम तलफ्फुज करते हैं, जैद देखो मैंने तलफ्फुज किया, आपने सुना या नहीं सुना, और जाराबा मैंने तलफ्फुज किया आपने सुना, तो इन पर इंसान क्या करता है, हकीकतन तलफ्फुज करता है, तो यह लफ्ज हकीकी है। वल हुक्मी, और लफ्ज हुक्मी जो है कल मनवी, ये मनवी की तरह है, किसकी तरह है, मनवी वो चीज जो नीयत में होती है, जो चीज, तो ये हुक्मी जो है मनवी चीज की तरह है, यानी जैसे एक चीज जहन नीयत कर लेता है कि इंसान उसकी, तो वो उसके नीयत में हकीकतन तो हाजिर नहीं लेकिन नीयत में तो मौजूद है। वल हुक्मी यु कल मनवी ये, और लफ्ज हुक्मी जो है वो मनवी चीज की तरह है। फी जैदुन जाराबा, जी जैदुन जाराबा के अंदर जैसे जैदुन है मुब्तदा, जाराबा फेल, इसके अंदर हुआ जमीर मरफू महलन इसका फाइल जो किसको लौट रही है, जैद को, फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला फेलिया होकर खबर, मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ, तो ये इस जराबा के अंदर हुआ जमीर है। वह एजरिब, और जैसे एजरिब इसके अंदर कौन सी जमीर है, अंता, तो जराबा के अंदर जो हुआ है वह है लफ्ज हुक्मन, तवज्जो से सुनो, जराबा के अंदर जो हुआ जमीर है वो क्या है, वो लफ्ज है, वो यूं कहो वो लफ्ज हुक्मी है, वो लफ्ज हुक्मी है, हकीकी नहीं। इसी तरह इजरिब के अंदर जो अंता जमीर है वो भी क्या है, लफ्ज हुक्मी है, लफ्ज हकीकी नहीं। भाई क्या वजह है आप इसको इन दोनों को लफ्ज हुक्मी क्यों कहते हो, लफ्ज हकीकी क्यों नहीं कहते, कहते हैं भाई लफ्ज हकीकी वो है जो हरूफ से मिलकर बनता है, जिसमें हरूफ होते हैं, आवाज होती है, जैसे देखो मैं बोल रहा हूं, हरूफ भी आप समझ रहे हैं और ये आवाज आप तक पहुंच रही है भाई, तो लफ्ज जो है उसमें हरूफ भी होते हैं और आवाज भी होती है, और ये जराबा के अंदर जो हुआ जमीर है और इजरिब के अंदर जो अंता जमीर है, न इसमें हरूफ है और न इसमें आवाज है। मैंने कहा जाराबा, जी वो हुआ जमीर कोई आपने सुनी नहीं, तो ये हुरूफ भी नहीं है उसके, और नीज आवाज भी नहीं है, कोई पता चला मैंने हुआ जमीर कहा हो। इसी तरह इजरिब कहा, इसके अंदर अंता जमीर, इसके हुरूफ भी नहीं है और आवाज भी नहीं है। तो कहते हैं इज लैसा मिन मकूलतिल हर्फी व सौती असलन, इसलिए क्योंकि ये हर्फ और आवाज के मकूले से नहीं है, असलन ऐ कतअन, ये कतई तौर पर हुरूफ और आवाज की कबील से नहीं है। वलम यूजा लहू लफ्जुन, और इसके लिए कोई लफ्ज वजा नहीं किया गया, इसके लिए अरबी जुबान में कोई लफ्ज वजा नहीं किया गया। जो जराबा के अंदर जमीर छुपी हुई है हुआ, और इजरिब के अंदर जमीर छुपी हुई है अंता, उसके लिए अरबी जुबान में कोई लफ्ज वजा नहीं किया गया। भाई तवज्जो है, अजीब फायदा जिक्र कर रहे हैं, जराबा के अंदर जो हुआ जमीर है उसके लिए अरबी में कोई लफ्ज वजा नहीं, इजरिब के अंदर जो अंता जमीर है उसके लिए कोई लफ्ज वजा नहीं। आप कहेंगे भी कैसे लफ्ज वजा नहीं, आप हमें बता तो रहे हैं जराबा के अंदर कौन सी जमीर है, हुआ बोल तो रहे हैं आप, बता तो रहे हैं हमें ये वाला लफ्ज है इसके लिए, और इजरिब में कौन सी जमीर है, अंता है, आप बता तो रहे हैं, बता भी रहे हैं, और आप कह रहे हैं उसके लिए अरबी में कोई लफ्ज भी वजा नहीं है। जब इसके लिए लफ्ज वजा है तो इसको तो लफ्ज हकीकी कहना चाहिए, लफ्ज हुक्मी नहीं कहना चाहिए। तो कहते हैं नहीं भाई, इस जराबा के अंदर जो जमीर छुपी हुई है उसके लिए अरबी जुबान में कोई लफ्ज वजा नहीं है। हम आरियतन, आरियत कहते हैं मांग कर किसी से कोई चीज लेना, जैसे किसी के घर मेहमान आते हैं तो वह हमसायों से बर्तन मंगवा लेता है कि इस्तेमाल के लिए दे दें, इसको आरियत कहते हैं। तो यहां पर भी इसी तरह वो जो जराबा के अंदर जमीर छुपी हुई थी उसके लिए अरबी में कोई लफ्ज नहीं, अब हमने उसको बयान तो करना है, अदा तो करना है, बतलाना तो है तुलबा को, तो फिर हम क्या करते हैं, वो जो जमीर मरफू मुनफसिल है हुआ, हुआ हुमा हुम, वो जमीर मुस्तार आरियतन ले ली, मांग कर ले ली कि हमने इसको इसके बारे में बतलाना है। बात समझ में आ गई, तो यह हुआ, ये जो जराबा के अंदर आप निकालते हैं हुआ जमीर, इसमें कोई हुआ नहीं छुपी हुई, हुआ हमने आरियतन लिया है, मुस्तार लिया है उस जमीर को बतलाने के लिए। इसी तरह इजरिब के अंदर कोई अंता जमीर नहीं है, इजरिब के अंदर जो जमीर छुपी हुई है उसके लिए अरबों ने कोई लफ्ज वजा ही नहीं किया, लेकिन उसको समझाना तो है, उसमें जमीर कौन सी है, मुखातब की है, तो वही मुखातब वाली जमीर जो जमीर मरफू मुनफसिल थी, अंता अंतुमा अंतुम, उसमें से अंता जमीर ले ली और बतलाया कि इसमें कौन सी जमीर है, अंता है। हकीकत में इसके अंदर अंता नहीं है भाई, क्योंकि अंता तो मुनफसिल है, और इस रिब के अंदर मुनफसिल होगी या मुत्तसिल होगी, मुत्तसिल जुड़ी हुई है, लफ्ज के अंदर छुपी हुई है। तो ये हुआ क्या है, जमीर है मुनफसिल, और अंता भी क्या है, जमीर है मुनफसिल। तो ये तो हमने मुनफसिल वाली जमीर मुस्तआर ले ली उस जमीर के बारे में बतलाने के लिए जो ज़रबा और इज़रिब के अंदर छुपी हुई है। तो इनके लिए अरबी जुबान में कोई लफ्ज वजा नहीं। तो और जो जिन लफ्जों से हम इसको ताबीर कर रहे हैं, ये हमने मुस्तआर लिए हैं, जमीर मरफूअ मुनफसिल के अल्फाज हमने मुस्तआर ले लिए हैं। तो कहते हैं वलम यूजा लहू लफ्जुन, और इसके लिए कोई लफ्ज वजा नहीं किया गया। व इन नमा अब्बरू अनहू बिस्तआरति लफ्जिल मुनफसिली लहू मिन नहवी हुआ व अंता। व इन नमा अब्बरू अनहू, और नहवी हजरात ने ताबीर किया इन जमीरों को बिस्तआरति लफ्जिल मुनफसिली लहू, मुस्तआर लेते हुए यूं तर्जमा करो, मुनफसिल के लफ्ज को मुस्तआर लेते हुए, जमीर मुनफसिल के लफ्ज को मुस्तआर लेते हुए इनको ताबीर किया नहवी हजरात ने। मिन नहवी हुआ व अंता, हुआ और अंता जैसों से मुस्तआर लेते हुए, इनसे मुस्तआर लेते हुए। फिर तर्जमा सुन लें, कहते हैं वलम यूजा लहू लफ्जुन, के इसके लिए कोई लफ्ज वजा नहीं किया गया। व इन्नमा अब्बरू अनहु बिस्तआरति लफ्जिल मुनफसिली लहू, और नहवियों ने इन जमीरों को ताबीर किया जमीर मुनफसिल के लफ्ज को मुस्तआर लेते हुए, जैसे कि हुआ है और अंता है भाई। व अजरऊ अलैहि अहकाम अल्लफ्ज़ फकान लफ्जन हुक्मन ला हकीकतन। सवाल पैदा होता है कि भाई आपने कहा जराबा के अंदर हुआ है और इजरिब के अंदर अंता है, और आपने कहा यह लफ्ज हुक्मी है, लफ्ज हुक्मी है, भाई क्या जरूरत है इनका एतबार ही ना करो, आप क्यों इनका एतबार करते हैं जब अरबों ने इसके लिए कोई लफ्ज ही वजह नहीं किया। कहते हैं भाई उसके बगैर गुजारा नहीं, हमने उसके ऊपर लफ्ज के अहकाम को जारी करना है। नहवी क्या करते हैं, उस पर लफ्ज के अहकाम को जारी करते हैं, लिहाजा उसको लफ्ज तो करार देना पड़ेगा, लफ्ज तो करार देना पड़ेगा, और लफ्ज हकीकी तो वह है नहीं, तो क्या कहना पड़ेगा, लफ्ज हुक्मी कहना पड़ेगा उस पर लफ्ज के अहकाम जारी करने के लिए। भाई किस तरह लफ्ज के अहकाम उस पर जारी करते हैं, कहते हैं आप देखते नहीं, जाराबा तरकीब कीजिए, जाराबा फेल, इसके लिए फाइल चाहिए या नहीं चाहिए, तो कहना पड़ेगा फेल तो बगैर फाइल के नहीं आ सकता, तो इसी के अंदर हुआ जमीर है मरफू महलन इसका फाइल, तो देखो हुआ जमीर को क्या बनाया, फाइल, जो इसके अंदर जमीर थी उसको फाइल बनाया, और फाइल लफ्ज होता है या गैर लफ्ज होता है, लफ्ज होता है, तो देखो लफ्ज के हुक्म इस पर जारी करना था, इन्हीं को इस्नाद करना था, इसकी तरफ क्या करना था, इस्नाद करना था, इसको मुस्नदिले बनाना था। और कभी इसी तरह कहते हैं जाराब तू, तर्जमा कीजिए जाराब तू, मैंने पिटाई की, और जाराब तू आना, तो जराब तू के अंदर यह ताजमीर भी मुतकल्लिम की, और आगे आना भी क्या है, मुतकल्लिम की जमीर है, तो कैसे कहेंगे, तरकीब कैसे करेंगे, जराब तू फेल बा फाइल, ताजमीर मरफू महल्लान मुअक्कद, और आगे अना जमीर मरफू महल्लान ताकीद, मुअक्कद ताकीद मिलकर फाइल, किसके लिए, ज़रबतु के लिए, फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया हुआ, तो देखा ज़रबतु अना, ज़रबतु अना, देखा जमीर के आगे ताकीद लाई जाती है, ज़रबा में ले लो, ज़रबा के अंदर ज़रबा हुआ, ज़रबा हुआ, तो तरकीब कैसे होगी, ज़रबा के अंदर हुआ जमीर मुअक्कद बनाएंगे और आगे हुआ को उसकी ताकीद बनाएंगे, और ताकीद लफ्ज की आती है गैर लफ्ज की नहीं आती। मालूम हुआ इसको क्या शुमार करना पड़ेगा, जो ज़रबा के अंदर जमीर छुपी है उसे क्या शुमार करना पड़ेगा, लफ्ज शुमार करना पड़ेगा। इसी तरह कभी कभार इस पर अतफ किया जाता है, मसलन मैं बताना चाहता हूं कि पिटाई की आज जैद ने भी और अमर ने भी, जैद ने भी और अमर ने भी, तो मैं कहूंगा जैदुन जाराबल यौमा व अमरुन, जैदुन जाराबल यौमा व अमरुन, ये अमरुन का आतफ किस पर है, अमरुन का आतफ किस पर है, ये जाराबा के अंदर जो हुआ जमीर है, और आपने पढ़ा है जमीर मरफू मुत्तसिल पर जब आतफ करना हो तो क्या करते हैं, तो उसकी ताकीद जरूरी है या फसल जरूरी है, इसीलिए दरमियान में मैं अल्यौम का फसल ले आया। तो ज़रबा के अंदर हुआ जमीर क्या है, मातूफ़ुन अलैह और आगे व अमरुन मातूफ है। तरकीब कैसे होगी, जैदुन ज़रबल यौमा व अमरुन, जैदुन मरफू लफजान मुबतदा, ज़रबा फेल, इसके अंदर हुआ जमीर मरफू महल्लान मातूफ़ुन अलैह, अल्यौमा मंसूब लफजान मफूल फी, और वाव हरफे आतफ, आमरुन मरफू लफजान मातूफ भाई हुआ जमीर पर, हुआ जमीर मातूफुन आले अपने मातूफ से मिलकर फाइल हुआ किसके लिए, जराबा फेल के लिए, जराबा फेल अपने फाइल और मफूल फी से मिलकर जुमला फेलिया होकर खबर, हुआ जमीर राजे थी जैद को, तो मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। तरीका समझ में आया, तो देखा ये जो जमीरे हैं, ये जो जराबा और इजरी वगैरह जैसे लफ्जों के अंदर जमीरें छुपी होती हैं, इस पर लफ्ज के अहकाम जारी करते हैं नहवी हजरात, कभी इसकी तरफ इसनाद करते हैं, कभी इसकी ताकीद लेकर आते हैं, कभी इस पर आतफ करते हैं वगैरह, तो ये तो लफ्ज के अहकाम है भाई, और लफ्ज के अहकाम इस पर तभी जारी हो सकते हैं जब इसको भी क्या शुमार किया जाए, लफ्ज शुमार किया जाए, और लफ्ज हकीकी तो यह है नहीं, लिहाजा कौन सा लफ्ज शुमार करना पड़ेगा, लफ्ज हुक्मी शुमार करना पड़ेगा। तो कहते हैं इसके लिए मुनफसिल के लफ्ज को मुस्तआर लेकर ताबीर करते हैं, वह अजरऊ अलैही अहकाम लफ्जी, या माजी के साथ तर्जमा करो, वह इन नमा अब्बरू अनहु बिस्तआरति लफ्जिल मुनफसिली लहू मिन नहवी हुआ व अंत व अजरऊ अलैही अहकाम लफ्जी, और नहवियों ने ताबीर किया इसको मुनफसिल, जमीर मुनफसिल के लफ्ज को इसके लिए मुस्तआर लेते हुए हुआ और अंता वगैरह से, व अजरऊ और जारी किए इस पर उन्होंने लफ्ज के अहकाम, फकान लफ्जन हुक्मन ला हकीकतन, तो ये हुक्मन लफ्ज है ना कि हकीकतन, वल महजूफ लफ्जुन हकीकतन ली अन्नहु कद यतलफ्फज़ु बिहिल इंसानु फी बाज़िल अहयानी। ये फिर एक सवाल का जवाब कि फिर जो महजूफ है इबारत में कभी कोई लफ्ज क्या होता है महजूफ, उसको भी हुक्मन लफ्ज कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए, हुक्मन लफ्ज, जैसे ज़ैदुन फिद्दारी, असल में क्या है ज़ैदुन साबितुन फिद्दारी, साबित क्या है यहां महजूफ है, या इसी तरह कभी मफूल को हजफ कर लेते हैं किसी चीज को हजफ, तो वो जो महजूफ होता है उसको भी क्या कहना चाहिए, लफ्ज हुक्मी कहना चाहिए, लफ्ज हकीकी नहीं कहना चाहिए, मालूम हो वो भी लफ्ज हुक्मी है। तो जवाब दे रहे हैं कि नहीं भाई, वो लफ्ज हुक्मी नहीं, वो हकीकतन लफ्ज है, वो क्या है हकीकतन लफ्ज है, ज़ैदुन साबितुन फिद्दारी, ठीक है, जैसे ज़ैदुन फिद्दारी यहां साबितुन क्या है महजूफ है, लेकिन कभी कभी साबितुन लफ्ज इबारत में भी आ जाता है या नहीं, आप उस पर तलफ्फुज़ करते हैं या नहीं, आप उस पर तलफ्फुज़ भी करते हैं, या जैसे जैसे कुरान में है यूसुफ आरिज अन हाजा अय्या यूसुफ, ये या क्या है यहां पर महजूफ है, तो महजूफ है, लेकिन ये या हर जगह महजूफ होती है या कभी कभी निदा में इसको जिक्र भी करते हैं, जिक्र देखा, तो महजूफ जो होता है उस पर कभी तलफ्फुज़ भी किया जाता है, तो उसको हकीकतन ही लफ्ज कहना पड़ेगा। यहां पर तो मसलन एक जगह पर तो वो महजूफ है, लेकिन दूसरी जगह पर उस पर क्या किया जाता है, बाकायदा तलफ्फुज़ किया जाता है। तो कहते हैं वल महजूफ लफ्जुन हकीकतन, और जो महजूफ है वो हकीकतन लफ्ज है, लिअन्नहु कद यतलफ्फज़ु बिहिल इंसानु फी बाज़िल अहयानी, इसलिए क्योंकि उस पर तलफ्फुज करता है इंसान, फी बाज़िल अहयानी ऐ फी बाज़िल औकात, अहयान क्या माना औकात, इंसान उस पर तलफ्फुज करता है बाज़े औकात में, व कलिमातुल्लाह ताला दाखिलतुन फी, कहते हैं अल्लाह ताला के जो कलिमात हैं वो भी इसके अंदर दाखिल हो गए, इस हिया मिम्मा यतलफ्फज़ु बिहिल इंसानु, अल्लाह ताला के कलिमात भी इसके अंदर दाखिल हो गए, इसलिए क्योंकि इन पर भी इंसान क्या करता है तलफ्फुज करता है, इंसान क्या करता है, तो मालूम हुआ लफ्ज वो है जिस पर इंसान तलफ्फुज करे या जिस पर तलफ्फुज कर सके, जिस पर तलफ्फुज कर सके उसको लफ्ज कहेंगे, तो कलिमातुल्लाह वो भी उन पर भी इंसान क्या करता है तलफ्फुज करता है या तलफ्फुज कर सकता है। तो कहते हैं वह कलिमात अल्लाह ताला दाखिलत उनफी ही, और अल्लाह ताला के कलिमात जो हैं वो इस लफ्ज की तारीफ में दाखिल हैं। इस हिया मिम्मा या तलफ़ज़ु बिहिल इंसानु, इसलिए क्योंकि ये उन चीजों में से है जिन पर इंसान तलफ़ुज़ करता है। वाला हादल कियासी कलिमातुल मलाइकति वल जिन्नी, और इसी कियास पर है मलाइका और जिन्नात के कलिमात, उन पर भी इंसान तलफ़ुज़ कर सकता है या किसी वक्त तक तलफ़ुज़ करता है, इसलिए वो भी क्या है, वो भी लफ्ज़ हैं भाई, हकीकतन लफ्ज़ हैं। तर्जमा समझ में आ गया। व दवाल उल अरबाउ वही अलखतूत वल उकूद वन नुसुब वल इशारात गैर दाखिलतिन फी। दवाल अरबा भाई, दवाल अरबा का जिक्र मंतिक की किताबों में आता रहता है भाई। भाई पहले समझ लें दलालत को। दलालत कहते हैं कि दो चीजों का इस तौर पर होना कि एक चीज से दूसरी चीज का पता चल जाए, इसको क्या कहते हैं, दलालत। मसलन आप कमरे में बैठे हैं और आपको खिड़की से धूप अंदर आती हुई नजर आई, इससे आपको पता चल गया कि बाहर सूरज निकल आया है, तो इस धूप ने दलालत की किस पर, सूरज पर। तो पहली को कहते हैं दाल और दूसरी को कहते हैं मदलूल, मदलूल। इसी तरह आपने दूर से धुआं उठते हुए देखा तो आप समझ गए कि नीचे आग जल रही है, तो इस धुएं से आपको आग का पता लगा, तो इसको क्या कहते हैं, दलालत। तवज्जो है, दलालत किसे कहते हैं, एक चीज से दूसरी चीज का पता चल जाए। या आप कमरे में बैठे हैं, बाहर आपको लोगों की बातों की आवाज सुनाई दी, अब आपको यह तो नहीं पता क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन इतना तो पता चल गया कि बाहर लोग हैं, तो देखा इन आवाजों ने उन लोगों पर दलालत कर दी। तवज्जो है। या इसी तरह मैं आपके सामने यह लंबी तकरीर कर रहा हूं, मैं जो जो लफ्ज बोलता जा रहा हूं आप उसका माना समझते जा रहे हैं, तो ये जो मेरे अल्फाज हैं वो मानी जो आप समझ रहे हैं उन पर दलालत कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं दलालत। फिर याद रखो ये जो दलालत है इसमें, इसमें जो पहली चीज है दलालत करने वाली उसको कहते हैं दाल लोन, और दूसरी चीज जिसका पता चला उसको कहते हैं मदलूल। धुआं क्या था, दाल, और आग क्या थी, मदलूल। धूप क्या थी, दाल, और सूरज क्या था, मदलूल। बाहर से जो आवाजें आई वो आवाजें क्या थी, दाल, और जो लोग थे वो क्या थे, मदलूल थे। फिर ये जो दाल है इस दाल के एतबार से दलालत की तकसीम की जाती है, कभी दाल लफ्ज होता है कभी दाल गैर लफ्ज होता है। देखो मैं जुबान से जो बोल रहा हूं आप माना समझते जा रहे हैं, तो लफ्ज क्या हुए, दाल, और जो माना है वो क्या है, मदलूल। तो यहां पर दाल क्या है, लफ्ज है, और कभी दाल गैर लफ्ज होता है। आपने दूर से धुआं देखा आपको क्या पता चला, आग है, किसी ने जुबान से कुछ भी नहीं कहा लेकिन आपको आग का पता चल गया या नहीं, किसके जरिए पता चला, धुएं से, और धुआं दाल जो है वो लफ्ज है या गैर लफ्ज, गैर लफ्ज है। भाई ये जो जुबान से मैं बोल रहा हूं धुआं ये तो ठीक है लफ्ज है, लेकिन जो आपने देखा वो क्या था, वो गैर लफ्ज है। आपने जैसे धूप को देखा और आपको सूरज का पता चला, तो यहां भी दाल क्या है, गैर लफ्ज। तवज्जो है। तो मालूम हुआ दाल कभी लफ्ज होता है और कभी गैर लफ्ज, जिससे दूसरी चीज का पता चले। फिर ये जो दलालत है कभी इसमें वजा का दखल होता है कभी वजा का दखल नहीं होता। वजा एक चीज को दूसरी चीज के लिए मुकर्रर करना, जैसे मैंने गिलास कहा आपको पता चल गया कि इससे क्या मुराद है, पानी पीने का बर्तन, और यह खुद ब खुद पता चला या उर्दू जुबान वालों ने मुकर्रर किया है, उर्दू जुबान वालों ने मुकरर किया है, लिहाजा इसीलिए आप किसी और जुबान वाले के सामने ये लफ्ज बोलेंगे जिनके यहां ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता तो उनको इसका माना समझ में नहीं आएगा। तो देखो ये है वजह, खास करना। तो दलालत में कभी वजह होती है, लोग क्या करते हैं एक चीज को दूसरी चीज के लिए दाल बना देते हैं, एक चीज को दूसरी चीज के लिए दाल बना देते हैं। जैसे देखो ट्रैफिक के इशारात हैं, गाड़ी चला रहे हो आप और सुर्ख लाइट जल जाए तो आप गाड़ी रोक देते हैं, और फिर जब सबज लाइट जलती है तो आप गाड़ी चला देते हैं, हालांकि किसी ने जुबान से एक लफ्ज नहीं कहा, क्यों? क्योंकि हमने सुर्ख लाइट को वजह किया है, मुकर्रर किया है, किस लिए? गाड़ी को रोकने के लिए। और सबज लाइट को हमने मुकर्रर किया है गाड़ी को चलाने के लिए। तो देखो, ये जो लफ्ज मैं बोल रहा हूं और आप इनका माना समझ रहे हैं, इनमें भी वजह है। और वो जो इशारे पर आप गाड़ी रोकते हैं और चलाते हैं लाइटों को देखकर, वहां भी वजह है। लेकिन यहां वजह क्या है? लफ्ज के लिए है, लफ्ज को मुकर्रर किया है माना के लिए। और वहां पर वो लाइट को मुकर्रर किया, लफ्ज को नहीं बल्कि लाइट को मुकर्रर किया है गाड़ी को रोकने और चलाने के लिए। तो मालूम हुआ, दाल कभी लफ्ज होगा और कभी गैर लफ्ज, फिर उसमें वजह होगी। कभी लफ्ज होगा, दाल लफ्ज होगा और वजह होगी, कभी दाल गैर लफ्ज होगा और उसमें भी क्या होगी? वजह होगी, यानी हमने मुकर्रर किया होगा। यहां तक बात समझ में आ गई? तो याद रखो, ये जो दवाले अरबा, ये चार दलालत करने वाली चीज है। दवालो जमा है दालतुन की, दलालत करने वाली चीजें। दवाले अरबा, चार दलालत करने वाली चीजें। ये कौन कौन सी हैं? खुतूत, उकूद, नुसुब, इशारात, ये चार हैं। खुतूत जमा है खत की, खत का माना है ये तहरीर। ये जो किताब में आपके सामने टेढ़ी मेढ़ी लकीरें खींची गई हैं, लेकिन आप इनको बेहतरीन पढ़ रहे हैं। किसी अंग्रेज के सामने ये रखो, वो इसको नहीं पढ़ सकेगा। तो ये देखो, मुख्तलिफ लकीरें हैं जिनको हमने मुख्तलिफ अल्फाज के लिए क्या किया है? मुकर्रर किया है। भाई बात समझ में आ रही? तो ये जो तहरीर है, ये अल्फाज पर दलालत करती है। देखो, मुल्ला जामी रहमहुल्ला ने कई सौ साल पहले ये किताब लिखी थी, लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं बेआईनी ही वही अल्फाज पढ़ रहे हैं जो किसने लिखे थे? मुल्ला जामी ने। ये तहरीर उन अल्फाज पर क्या कर रही है? दलालत कर रही है। तो ये जो खुतूत हैं, ये दलालत करते हैं अल्फाज पर भाई। और ये लफ्ज नहीं है, लफ्ज नहीं है, इन खुतूत से लफ्ज हमें समझ में आ रहा है। खुद ये खुतूत, ये तो लकीरें हैं, ये लफ्ज नहीं। लफ्ज तो वो है जो मैं जुबान से अदा कर रहा हूं। इन लकीरों को मैं देखूंगा, इन पर नजर डालूंगा, तो मुझे लफ्ज समझ में आएंगे और फिर मैं जुबान से उसको अदा करूंगा। तो ये लकीरें क्या हैं? लफ्ज हैं या गैर लफ्ज हैं? गैर लफ्ज हैं। तवज्जो है, ये गैर लफ्ज हैं भाई। तो ये अलबत्ता उन लफ्जों पर क्या कर रही हैं? दला। तो खुतूत से मुराद हैं ये तहरीरें। हर जुबान वाले की अपनी अपनी तहरीरें हैं भाई। और इनका अजीम फायदा है कि सैकड़ों साल पुरानी बातें या पुराने जमाने की भी आप सैर करना चाहें, तो उस जमाने की किताब उठाते हैं और पढ़ते चले जाते हैं, और वो ही बेआईन ही वही बातें जो उस मुसन्निफ ने लिखी हैं आपको इस तरह समझ आती हैं जैसे आपके सामने बैठकर वो ये बातें सुना रहा हो। तो ये है खुतूत। दूसरा है उकूद भाई। उकूद जमा है आकदुन की, आकदुन। आकदुन का माना होता है गिरा, गिरा लगाना, किसी चीज को बांधकर गिरा लगाना। मसलन रस्सी में आप गिरा लगा देते हैं, उसको बांध देते हैं, तवज्जो है। लेकिन यहां जो उकूद का लफ्ज आया, इससे वो धागे या रस्सी की गिरा मुराद नहीं, बल्कि ये उंगलियों के जोड़ मुराद हैं, उंगलियों के जोड़ मुराद हैं। देखो, हर उंगली में तीन पोरे हैं और दरमियान में हर दो पोरों के दरमियान जोड़ है जहां से उंगली मुड़ती है। तो ये उंगलियों के जोड़ जो हैं, ये उकूद मुराद हैं। तवज्जो है, इसी से उकूदुल अनामिल है भाई, उंगलियों के जोड़। ये अरब के यहां कदीम जमाने में उंगलियों के जोड़ों के जरिए वो एक से लेकर 10,000 तक अदद शुमार करते थे, और इसको उकूदुल अनामिल कहते थे, उकूदुल अनामिल कहते थे। देखो, इसका तरीका समझ लो भाई। सबसे पहले उंगलियों के नाम, ये सबसे छोटी उंगली को खिनसर कहते हैं, खानून सौदरा, खिनसर। दूसरी को, उसके साथ वाली को बिनसर, बानून सौदरा। तीसरी वुस्ता, चौथी सबाबतुन, सबाबा, ये जो शहादत की उंगली है। और अंगूठा जो है, इसको इबहाम कहते हैं। तो इनके क्या नाम हुए? सबसे छोटी उंगली खिनसर, बिनसर, वुस्ता, सबाबा और इबहाम। खिनसर, बिनसर, वुस्ता, सबाबा और इबहाम, ये जो दो हाथों की 10 उंगलियां हैं, इनके जरिए अरब 10,000 तक अदद शुमार करते थे, और इसके जरिए इशारा कर देते थे। मसलन ताजिर बैठा है, आप उससे पूछने गए कि यह चीज कितने की है, वो जुबान से कहने के बजाय हाथ से इशारा कर देता कि यह चीज इतने की है। या वो दूसरों से छुपाना चाहता है कि सबको पता ना चले, अगर जुबान से कहूंगा सबको पता चल जाएगा, तो वो छुपाकर हाथ से आपको इशारा कर देता कि ये चीज इतने की है। तो इन 10 उंगलियों के जरिए दाएं और बाएं हाथ की, इनके जरिए अरब 10,000 तक आदत शुमार करते थे। किस तरह? देखो, ये जो दाया हाथ है इसमें जो खिनसर, बिनसर और वुस्ता है, खिनसर, बिनसर और वुस्ता, इन तीन के जरिए इकाइयां शुमार होती थी, 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक। और ये जो सबाबा और इबहाम है यानी शहादत की उंगली और अंगूठा, इसके जरिए वो दहाइयां शुमार करते थे। तवज्जो है? किस तरह? देखो, मैं मसलन एक का आदत बतलाना चाहता हूं, तो उसका तरीका यह है कि खिनसर को मोड़ लें, खिनसर छोटी उंगली को मोड़ लें इस तरीके से कि इसका सर इसकी जड़ के करीब रहे, इसका सर सर जड़ के करीब रहे, दूर ना जाए। यह एक की अलामत है। आप दो का इशारा करना चाहते हैं तो साथ बिनसर को भी इसी तरह मोड़ लें कि खिनसर और बिनसर दोनों मुड़ी हुई हैं और दोनों के सर इनकी जड़ों के करीब हैं। यह दो की अलामत है, खिनसर और बिनसर दोनों मुड़ी हुई हैं। फिर तीन का इशारा करना चाहते हैं तो वुस्ता को भी साथ इसी तरह मोड़ दें, खिनसर, बिनसर और वुस्ता तीनों मुड़ी हुई हैं और जड़ों के करीब ही इनके सर हैं। यह है तीन की अलामत। चार का इशारा करना चाहते हैं तो बिनसर और वुस्ता को इसी तरह रहने दें और खिनसर को सीधा कर दें, बिल्कुल सीधा, खिनसर बिल्कुल सीधी और बिनसर और वुस्ता क्या है, इनके सर जड़ों के करीब हैं। यह है चार की अलामत। आप पांच के इशारा, पांच की अलामत बनाना चाहते हैं तो अब खिनसर के साथ साथ बिनसर को भी सीधा कर दें, खिनसर और बिनसर सीधी हैं और वुस्ता झुकी हुई है, ये क्या है, पांच की अलामत है। छह का इशारा करना चाहते हैं तो आप वुस्ता को सीधा कर दें और बिनसर को सिर्फ मोड़ दें, ये कितने की अलामत है, छह की अलामत। बिनसर मुड़ी हुई है, जड़ के करीब इसका सर है, खिनसर भी सीधी और वुस्ता भी सीधी है, यह है छह की अलामत। सात की अलामत यह है कि सारी उंगलियां सीधी कर लें और सिर्फ खिनसर जो छोटी उंगली है इसको मोड़ लें जिस कदर आप मोड़ सकते हैं, हथेली के बिल्कुल आखिरी किनारे तक इसको मोड़ कर ले जाएं। तवज्जो है? पहले खिनसर का सर कहां था, उसकी जड़ के करीब, अब पूरी हथेली पे उसको फैला दें, दूर तक ले जाएं भाई। यह है सात की अलामत। इसी के साथ अगर बिनसर को भी मोड़ दें इसी तरह तो यह है आठ की अलामत, और इसी के तरह साथ वुस्ता को भी मोड़ दें तो यह है नौ की अलामत। देखो, नौ की अलामत, खिनसर, बिनसर और वुस्ता तीनों मुड़ी हुई हैं और पूरी हथेली को इन्होंने अपने नीचे छुपा लिया है, यह नौ की अलामत है। बात समझ में आ गई? फिर देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तरीका समझ में आया। उसके बाद दहाइयां, ये वुस्ता और सबाबा और इबहाम के जरिए दहाइयां बयान होती हैं। मसलन आप 10 का इशारा करना चाहते हैं तो उसका तरीका यह है कि जो शहादत की उंगली है यानी सबाबा, इसको अंगूठे के दरमियान वाले जोड़ पर रख दें। यह है 10 की अलामत। यह एक दरमियाना सा दायरा बन गया, दरमियाना सा दायरा बन गया, यह है 10 की अलामत। 20 की अलामत यह है कि अंगूठे को वुस्ता और सबाबा के बीच में ले आए, बीच में ले आए, कि अंगूठे का नाखून सबाबा के पहले पोरे के साथ लगा हो, इन दोनों के बीच में अंगूठे को दाखिल करो, सबाबा और वुस्ता के बीच में दाखिल करो और अंगूठे का नाखून किसके साथ लगाओ, सबाबा के पहले पोरे के साथ, पहले बाकी उंगलियां सीधी रहें, सिर्फ अंगूठे को बीच में ले आए, सबाबा, वुस्ता वगैरह सब उंगलियां सीधी हों। यह है 20 की अलामत। 30 की अलामत यह है कि सबाबा को अंगूठे के बिल्कुल ऊपर सर पर रख दें, यह बड़ा दायरा बन गया, यह है 30 की अलामत। 40 की अलामत यह है कि आप अंगूठे को सबाबा की पुश्त पर ले जाएं, पहले पोरे के पीछे ले जाएं, जितना पीछे ले जा सकें, यह है 40 की अलामत। सबाबा बिल्कुल सीधी और अंगूठे को उसके पुश्त पर उसके पीछे ले गए जितना ले जा सके, ये कितने की अलामत, 40। 50 की अलामत ये है कि अंगूठे को हथेली के वस्त में मोड़ दें जितना मोड़ सके, अब अंगूठा हथेली के वस्त में है, हथेली के साथ लगा हुआ है, ये है 50 की अलामत। तवज्जो है। 60 की अलामत यह है कि आप अंगूठे का जो नाखून है इस पर सबाबा का दरमियान वाला पोरा रख दें, अंगूठे का जो नाखून है इस पर सबाबा का दरमियान वाला पोरा रख दें, एक पोरा अंगूठे से आगे निकला हुआ हो, एक पोरा अंगूठे से नाखून से आगे निकला हुआ हो सबाबा का, यह 60 की अलामत है। 70 की अलामत यह है कि अंगूठे को सबाबा के साथ जोड़ दें, सबाबा भी सीधी अंगूठा भी सीधा, फिर इस अंगूठे को थोड़ा सा ऊपर ले जाएं और सबाबा के पहले जोड़ पर रख दें, यह है 70 की अलामत। 40 क्या था? पुश्त पे ले जाते थे, अब पुश्त पे नहीं ले जाना, बस साथ ही आगे ले जाए, पहले जोड़ पर रख दिया, यह है 70 की अलामत। तवज्जो है। और 80 की अलामत यह है कि सबाबा के सबसे ऊपर वाले पोरे को अंगूठे के पीछे उसकी पुश्त पर जोड़ पर रख दें, अंगूठे के पुश्त पर जो जोड़ है इस पर सबाबा का पहला पोरा रख दें, अंगूठे का नाखून खुला हुआ हो, बिल्कुल सामने नजर आ रहा हो। देखो 60 के अंदर दूसरा पोरा हम रखते थे सबाबा का नाखून के ऊपर, और इसमें सबाबा का सबसे ऊपर वाला पहला पोरा हम रखते हैं किस पर? 80 में, अंगूठे के दरमियान वाले जोड़ पर, यह है 80। और 90 की अलामत यह है कि सबाबा को झुकाकर अंगूठे के बिल्कुल जड़ में छोटे से छोटा दायरा जो बना सकें, यह है 90 की अलामत, यह है 90 की अलामत। तरीका समझ में आया? इसी तरह यह था दाएं हाथ में, बाएं हाथ में उसी तरह है। दाएं हाथ में खिंसर बिनसर और वुस्ता किसके लिए इस्तेमाल करते थे? इकाइयों के लिए। बाएं हाथ में यही तीन इस्तेमाल होंगे सैकड़ों के लिए, वहां दाएं हाथ में जो एक की अलामत थी बाएं हाथ में वो 100 की अलामत है, दाएं हाथ में जो 2 की अलामत थी बाएं हाथ में वो 200 की अलामत है, इस तरह। और जैसे दाएं हाथ में जो दहाइयां थी वो सबाबा और इबहाम के जरिए, बाएं हाथ में वो 1000 की अलामतें हैं। किसकी? 10 की अलामत क्या थी? कि सबाबा को क्या रखें? अंगूठे के दरमियान में रखें, पुश्त की तरफ नहीं लेके जाना, दरमियान में अंगूठे के उसके जोड़ पर रख दें, यह क्या है? 10 की अलामत। और यही अलामत बाएं हाथ में बनाएं तो इसका माना है 1000। तो यहां जो 10 की अलामत और 20, 30, 40 की अलामत थी दाएं हाथ में, वही अलामतें बाएं हाथ में 1000, 2000, 3000, 4000 की अलामतें हैं। तरीका समझ में आया? तो मसलन मैं आपको बताना चाहता हूं 51 बताना चाहता हूं। क्या बताना चाहता हूं? 51 का क्या तरीका है? अंगूठे को हथेली के दरमियान ले आया, यह 50 की अलामत, और उधर एक की अलामत बना ली खिंसर के जरिए, यह है 51। अब देखो यह है 52, यह है 53, यह है 54, यह है 55, यह है 56, यह है 57, यह है 58, यह है 59। इस तरह पूरे 99 तक आदत इस दाएं हाथ के जरिए हो जाएंगे, और 9900 आदत किसके जरिए बयान होंगे? बाएं हाथ के जरिए। तो 9900 बाएं हाथ के जरिए और 99 दाएं हाथ के जरिए, तो कुल कितने हो गए? 9999। और 10000 की अलामत यह है कि दोनों हाथों में अंगूठे और सबाबा को मिलाकर चोंच जैसी शक्ल बना लें, यह है 10000 की अलामत भाई। 10 दोनों हाथों के जरिए, तो यह क्या है? 10000 की अलामत है। यह थे उकूद भाई। अब इसमें देखो ये इशारात हैं, इसमें कोई लफ्ज बोलना पड़ता है नहीं, तो ये सब दलालत करने वाली चीजें हैं, और ये सब गैर लफ्ज हैं, लफ्ज नहीं हैं। खतूत भी क्या हैं? गैर लफ्ज। उकूद भी क्या हैं? गैर लफ्ज। इसी तरह है नुसुब भाई। नुसुब जमा है नुस्बतुन की, और नुस्बतुन कहते हैं गाड़ी हुई चीज। इससे मुराद यह है, ये पुराने जमाने में रास्ते में मसलन सफर करते थे, तो हर रोज जितना सफर तय किया जाता था 20-30 किलोमीटर का, उस पर एक पत्थर लगाया जाता था, एक निशान, जिसे पता चलता था कि ये एक मंजिल हो गई है, दो हो गई है, तीन हो गई हैं, उनको नुसुब कहा जाता था। मसलन यहां से पिशावर जाना है तो मसलन 20 दिन का सफर है। हर रोज काफिला फजर के वक्त चलता और 10-11 बजे दिन के जब हो जाते, थोड़ी गर्मी हो जाती तो पड़ाव डाल दिया जाता था। तवज्जो है, ये 2-4-6 घंटे का जो सफर हुआ इसमें 20-30 किलोमीटर तय हो गए और फिर पड़ाव डाल लिया जाता था। तो इस तरह हर मंजिल के पत्थर लगे होते थे। तो जैसे आजकल भी आप देखते हैं, आप सड़क के किनारे पत्थर लगे होते हैं और उन पर फासला लिखा होता है, लेकिन ये जो पत्थर हैं ये नुसुब नहीं, ये उस कबील से नहीं जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, ये खतूत की कबील से है। इन पत्थरों को देखकर आपको फासले का पता चलता है या इन पर लिखी हुई तहरीर से फासले का पता चलता है? तहरीर से। तो वो खतूत की कबील में दाखिल हैं ये वाले नुसुब। उस वो जो नुसुब होते थे उन पर कुछ लिखा नहीं होता था, बस वो उनको शुमार करते जाते थे कि मसलन 20 गुजर गए तो 5 या 6 रह गए तो इतने दिन का सफर बाकी है, तो उनको नुसुब कहा जाता था। देखो वो नुसुब क्या कर रहे हैं, दलालत कर रहे हैं फासला कितना हो चुका और कितना रहता है। इसी तरह इशारात, भाई इशारात मुख्तलिफ किस्म के इशारात जो हमने मुकर्रर किए हुए हैं, मसलन जैसे ट्रैफिक के इशारे हैं, ये भी क्या हैं? इशारात। या इसी तरह जैसे इशारात मुकर्रर कर लिए जाते हैं किसी काम के लिए, कोई किसी को किसी काम के लिए आंखों से इशारा कर देता है वगैरह, तो ये सब क्या हैं? इशारात। और ये लफ्ज गैर लफ्ज हैं, यहां पर लफ्ज नहीं, तवज्जो है। ये इन सब में वजा है, ये तहरीर में भी क्या है? वजा। ये तहरीर इस लफ्ज के लिए वजा है। इसी तरह ये जो उकूद हैं उनमें भी क्या है? वजा है, मुकरर किया है। नुसुब भी क्या थे? उनमें भी वजा थी, इसलिए मुकरर किए थे। इशारात में भी क्या होती है? वजा। मुख्तलिफ किस्म के इशारे जो भी हो जाए, बात समझ, मुख्तलिफ किस्म के इशारे। ये जैसे जैसे देखो, एक तालिब इलम था, वो इम्तिहान दे रहा था, उसको सवाल नहीं थे याद, उसने अपने साथी से कहा कि भाई मुझे, मेरी तैयारी नहीं है इम्तिहान में, आपने मेरी मदद करनी है, इम्तिहान में मदद करनी है। तो उस साथी ने कहा भाई मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको कौन सा सवाल नहीं आता? उसने कहा भाई 3 सवाल आएंगे इम्तिहान में, अगर मुझे पहला सवाल ना आया तो मैं ये अपना रूमाल ना अपने सामने नीचे रख लूंगा, कंधे से उतार कर सामने रूमाल रख लूंगा, तुम समझ जाना इसको पहला सवाल नहीं आता तो उसमें मेरी मदद करना, और अगर मुझे दूसरा सवाल ना आया तो मैं अपनी ऐनक उतार कर नीचे रख दूंगा, तुम समझ जाना इसको दूसरा सवाल नहीं आता, और अगर मुझे तीसरा सवाल ना आया तो मैं अपनी टोपी उतार कर नीचे रख दूंगा, तुम समझ जाना कि मुझे तीसरा सवाल नहीं आता तो तुमने मेरी उसमें मदद करनी है। देखा, ये इशारात क्या कर लिए? वजा कर लिए, मुतायन कर लिया आपस में। तो चुनांचे जब उस तालिब इलम पर्चा शुरू हुआ, थोड़ी देर बाद उसने मुड़कर देखा तो 3 चीजें नीचे रखी हुई थी भाई। तो ये अहवाल होते हैं बास के भाई। देखिए भाई, किताब पर कहते हैं वद्दवालुल अरबाउ वही, वद्दवालु लाम मुशद्दद है भाई, वद्दवालुल अरबाउ और दवाल अरबा जो हैं वही अल खुतूत वल उकूद वल नुसुब वल इशारात, और ये खुतूत उकूद नुसुब और इशारात हैं, ये जो हैं दवाल अरबा, गैरु दाखिलतिन फीही, वो इस तारीफ के अंदर दाखिल नहीं भाई। दरअसल बाज मैंने बताया और उलमा ने भी काफिया की शुरुहात लिखी हैं, तो बाज उलमा ने जिक्र किया कि ये जो साहिब काफिया हैं इन्होंने जो कलिमा की तारीफ शुरू की, अल कलिमतु लफ्जुन, ये लफ्जुन इसलिए लेकर आए ताकि दवाले अरबा कलिमा से खारिज हो जाएं, क्योंकि उनमें से कोई भी कलिमा नहीं, तहरीरें वो कलिमा हैं, उकूद कलिमा हैं, नुसुब इशारात उनमें से कोई भी कलिमा नहीं, तो उनको निकालना जरूरी था, तो किसके लिए निकाला? लफ्ज। जब लफ्ज उन कह दिया वो तो लफ्ज नहीं है, तो वो सब क्या हो गए? निकल गए। मुल्ला जामी बता रहे हैं कि नहीं भाई, ये लफ्ज जो है जिंस के दर्जे में है और दवाले अरबा को निकालने के लिए नहीं है, इससे पहले कोई लफ्ज जिक्र होता और दवाले अरबा अंदर दाखिल होते तो फिर लफ्जुन के जरिए क्या किया जाता? उनको निकाला जाता, तो वो दाखिल ही नहीं है तो उनको निकालने की कोई जरूरत भी नहीं है। तो कहते हैं वद्दवाल उल अरबा वही अल खतूत वल उकूद वन नुसब वल इशारात गैर दाखिलतिन फी, ये उसमें दाखिल ही नहीं है यानी इस तारीफ के अंदर। फला हाजत इला कैदिन युखरिजुहा, लिहाजा जरूरत नहीं है ऐसी कैद की। युखरिजुहा जो इनको निकाल दे, कैद आया नकेरा और नकेरा के बाद युखरिजु फेल आया तो ये उसके लिए सिफत बनेगा, तो जरूरत नहीं है इला कैदिन ऐसी कैद की। युखरिजुहा जो इन दवाले अरबा को निकाल दे। यहां तक बात समझ में आ गई। चलिए बस भाई, हादा हुवल मराम, वल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।